things are possible. Only.
सारी बातें संभव हैं केवल विश्वास। आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना के लिए झुकाएं। अपने झुके हुए सिरों के साथ मुझे संदेह है यदि कोई विशेष निवेदन जो परमेश्वर के सामने बताना चाहेंगे बस हाथ उठाएं। थोड़ा अपने हाथों के नीचे बस अपना निवेदन थामे रहें। स्वर्गीय पिता इसके लिए हम आभारी हैं। दूसरी बार हम यहाँ पर जमा हुए हैं अनंतता की इस ओर और हम इस प्रातः प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सामर्थ फिर से जो आपकी ओर से आती है आए कि हमें साहस दे उस सामने आने वाली यात्रा के लिए। हम यहाँ इब्रानी बालकों के समान एकत्र हैं जो भोर को हुए कि मन्ना पाए जो उन्हें रात्रि पश्चात दिया जाता था कि आने वाले दिनों में जीवित रहें। हम आत्मिक मन्ना के लिए एकत्र हैं इस प्रातः कि हमें यात्रा के लिए शक्ति दें। उन प्रत्येक हाथों के नीचे जो उठे हैं आप जानते हैं कि उनकी क्या आवश्यकता है प्रभु, और मैं अपनी प्रार्थना करता हूँ उनके साथ आपके सामने कि आप हमें हमारी हर आवश्यकता को प्रदान करेंगे जिसकी उनको आवश्यकता है। बीमारों को और अपाहिजों को चंगा करें प्रभु। हम जानते हैं कि आप परमेश्वर हैं और सारी चीजें कर सकते हैं और इन्हें करने की प्रतिज्ञा दी है। यदि हम वैसा कर सकें जैसा गाने ने हमें आदेश किया केवल विश्वास, और जैसा कि हमने महिमा वाले शब्द सुने हैं राजा के साथ चलते और बात करते हैं। अब पिता परमेश्वर अपने वचन को आशीषित करें जैसा कि ये आज सुबह आगे बढ़ता है और होने पाए ये हमारे हृदयों में विश्राम स्थल पाए कि ये उन चीजों को लेकर आए जिन्हें हमने मांगा है। पिता प्रभु यीशु के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। धन्यवाद बहन। मैं विश्वास करता हूँ ऐसा कहा गया है। मैं आनंदित हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा आओ हम प्रभु के भवन को चलें। कल हॉट स्प्रिंग छोड़ते हुए भाई मूर कह रहे थे, भाई ब्रनम बोले आप क्या आप नीचे टेक्सास गाड़ी से नहीं जाएंगे, और मेरे साथ वहाँ बेदारी की सभा में कहा कुछ एक दिन विश्राम करें। मैंने कहा कल मेरी दो सभाएं हैं। उसने कहा दो सभाएं? मैंने कहा हाँ। कहा कठिन है जैसा आपने यहाँ प्रचार किया। कहा एक व्यक्ति को प्रत्येक के बाद एक सप्ताह विश्राम करना चाहिए। कहा आप यहाँ एक पास्टर को लें, उसे रविवार प्रातः का संदेश लेने दें और आदि आदि। कहा तब वो सप्ताह भर विश्राम करता है और तब और हो सकता है ये 30 मिनटों का होगा या कुछ और। कहा आप यहाँ लगभग 2 या 3 घंटे प्रचार करते हैं एक बार में। कहा तब एक दिन के बाद दूसरे दिन और कभी कभी एक दिन में 2 बार और फिर प्रार्थना पंक्ति चलाते हैं सारे उन विचारों को परखना। कहा अब आप कहते हैं आप घर जा रहे हैं रविवार को दो सभाएं लेने। मैंने कहा जी हाँ श्रीमान। कहा आप ये कैसे करते हैं? मैंने कहा मेरी सहायता प्रभु की ओर से आती है, समझे। समय हो रहा है जैसा एक ने थोड़ी देर पहले किसी ने प्रार्थना में कहा, जैसे ही मैं अंदर आया समय हो रहा है और आवश्यकता बहुत अधिक है। हम यहाँ अपना भाग पूरा करने आए हैं कि इस महान घड़ी में हमारी सहायता की जा सके जिसमें हम हैं। अब यदि प्रभु ने चाहा आज रात्रि मैं एक विषय पर बात करना चाहता हूँ, क्या आपका जीवन सुसमाचार के योग्य है, यही जिसे मैं टेप करना चाहता हूँ। अब मैं नहीं जानता कि वे इस सुबह टेप करने जा रहे हैं या नहीं। मैं किसी को कमरे में देखता हूँ, वहाँ है, वहाँ कोई व्यक्ति वहाँ पर है। मैं समझता हूँ वे, मैंने किया, मैंने सोचा भाई नेविल इसे करेंगे। मैंने बीते रविवार बस उनके लिए पूछा कि उनका लिए जाए, उसके संदेश के साथ आगे बढ़े और फिर आगे बढ़े, उनके पीछे से मुझे किसी चीज के साथ आने दें। परंतु यदि वे संडे स्कूल पाठ को टेप करना चाहते हैं, क्यों, ये अच्छा रहेगा। और तब प्रभु ने चाहा तो अगले रविवार, जो कि यदि प्रभु ने अनुमति दी और हम यहाँ हैं, मैं उस विषय पर बोलना चाहता हूँ जिसे कि मैं लंबे समय से चाह रहा हूँ। मैंने प्रतिज्ञा की है इस प्रकार के संदेश में मैं पहले आराधना में बोलूंगा वे टेप किए हुए संदेश। मैं इस पीढ़ी पर अभियोग लगाना चाहता हूँ यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए अगले रविवार प्रातः प्रभु ने चाहा। और अब आज रात्रि 7 बजे या 7:30 संदेश है, क्या आपका जीवन सुसमाचार के सम्मान योग्य है। अब कभी कभी इस प्रकार के संदेशों को बोलते हुए मैं कहता हूँ ये बातें जो सुंदर कठोर काटने वाली और वास्तव में मेरा अर्थ ठीक इस कलीसिया के लिए नहीं होता है या कुछ। आपको याद है जब मैं बोल रहा हूँ ये सारे संसार में जाता है, समझे, और हमारे पास टेप करने का साथ सामान है सारे संसार में, और वे इन संदेशों को वहाँ जंगलों में ले जाते हैं और सब जगह, और कभी कभी पवित्र आत्मा मुझे कुछ कहने की अगुवाई करता है। ये वो बात हो सकती है जो वो किसी के लिए वहाँ चाहता है, ऑस्ट्रेलिया में या कहीं कुछ और। इसलिए हो सकता है किसी दशा में आप कहेंगे अच्छा अब वो स्थिति यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ ये क्यों कहता है, हो सकता है ये कहीं और के लिए हो। आप देखिए, इसलिए हाँ मैं निश्चित हूँ आप लोग ये समझते हैं कि ये संदेश किसी एक की ओर संकेत नहीं करते, ये कलीसिया के लिए निर्देशित है कुल मिलाकर हर कहीं या जो भी अगुवाई प्रभु कहने के लिए करता है और करने के लिए। वहाँ हॉट स्प्रिंग्स में महिमामय समय रहा और एक पुराने तरह की पेंटिकॉस्टल सभा। मैं निश्चित हूं कि आप में से बहुत से संतुष्ट हुए ये वहां पेंटिकॉस्टल लोग जब से आप वहां गए हैं। अच्छा मैं झुंड को नहीं जानता, मुझे बस वहां एक सप्ताह के लिए जाना था और मैंने दो या तीन दिन दिए, परंतु एक बात कहना चाहता हूं, उस सभा में निश्चय ही उसमें विश्वास था कि विश्वास करे। यदि आप में से कोई वहाँ था जो कि मैं जानता हूँ ये महिला यहाँ पर यहाँ कोने में बैठी है, मैं नहीं जानता कि वो कौन है या ठीक यहाँ पर, मैं जानता हूँ कि ये वहाँ पर थी, मैं जानता हूँ कुछ भाई लोग वहाँ पर थे, भाई जैक्सन, वे, भाई पामर, यही जो लोगों को मिलता है जब उनके पास विश्वास होता है, समझे। ध्यान दे वो चंगाई की पंक्ति, वहाँ एक भी ऐसा नहीं आया या गया सिवाय जिसे परमेश्वर ने चंगा किया, समझे। और इसलिए जब उसके पास विश्वास है, और दूसरी बात, आप में से कोई हो सकता है जो समझ नहीं सकता कि भावुकता, नाचना, चिल्लाना, अच्छा वे बस वे किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देख रहे हैं, वे बस चिल्ला रहे हैं परमेश्वर के सामने, समझे, ये ठीक बात है। परंतु मैं कहना चाहता हूँ उनमें से सबसे शुद्ध दिखाई देने वाली महिलाएं का झुंड जो मैंने कभी देखा, वे लंबे बाल और लोग वहाँ पीछे जंगल से, पीछे झाड़ियों से, परंतु मैं विश्वास नहीं करता मैंने किसी को जो आसपास आधुनिक से दिखने वाले हों देखा हो। आप जानते हैं मेरा क्या अर्थ है, इस प्रकार के श्रृंगार के साथ और चीजें पहनी हुए, ये दर्शाता है मैं उनके साथ सहमत नहीं हो सकता जो वे सिखाते हैं, परंतु मैं निश्चय ही वहाँ सहमत हो सकता हूँ वे मुझे मसीहों के समान दिखाई पड़ते हैं। इसलिए प्रभु ने मेरी अगुवाई की कि मैं विषय पर बोलूं बीते कल दोपहर में, प्रभु एक बार और कलीसिया में उनमें से कुछ नहीं जानते, ये मैंने एक उद्देश्य के लिए किया क्योंकि प्रभु ने मुझे करने की अगुवाई की। ये छोटा झुंड किसी चीज में भटक रहा था और इसके लिए प्रभु ने सहायता की इसे करूं, इसलिए ये शानदार था। मैं निश्चय ही, आप जानते हैं चीजें बढ़ती जाती हैं यदि आपके पास आत्मिक आंख नहीं है, आपको नहीं मिलता, समझे, आपको सामने देखना ही है उन चीजों को। मैं भीतर आया और ये भाई अनग्रेन, ये लगभग दूसरी बार जिसे इस व्यक्ति को मैंने गाते सुना, जैसे ही मैं अंदर कमरे में आया वो गा रहा था, मैं चलता और मैं राजा के साथ बात करता, मैंने सोचा क्या ये सुंदर नहीं, कैसे कभी वो राजा, समझे, चल रहा है और बातें कर रहा है कि जिसका अर्थ ये निरंतर संगति है, न कि केवल कलीसिया में परंतु हर कहीं चलते और राजा से बात करते, और वहाँ दीवार पर देखते हैं और वहाँ छोटे चित्र पर कार्ड चिपका हुआ है एक प्रकार के दृश्य का, वो व्यक्ति जिसका नाम जॉर्ज टॉड है जिसने मेरे लिए रंगा है। मैं नहीं जानता क्यों व्यक्ति ने ये कभी किया, संभवतः हो सकता है उसने नहीं सोचा और उसने इसे रंग दिया, और ये एक पीछे जंगल में एक पहाड़ का चित्र और सोता नीचे बह रहा है और सोते के दूसरी ओर एक हिरन और उसका बच्चा खड़े हैं, उनके कान ऊपर को सोते के पार देख रहे हैं। मैं नहीं जानता कि श्री टॉड यहाँ पर है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ प्रभु मुझसे बोला जब मैंने उस चित्र को देखा, और संभव है उसे नहीं मालूम जब वो उसे रंग रहा था। मेरी छोटी कहानी याद है उस हिरन और वो व्यक्ति जो उसे मारने जा रहा था और उसकी आवाज, भाई वो वहाँ अपने बच्चे के साथ थी, इस प्रकार जीवन जल के साथ। देखिए प्रेरणा, किस प्रकार वो माँ हिरनी और उसका बच्चा वहाँ पर थे, और मैंने सोचा हाँ, और दूसरी ओर जहाँ ये मोर पंखी के वृक्षों के साथ, मेरे पास भी एक माँ और बालक वहाँ पर हैं जो वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद भाई जॉर्ज टॉड, यदि वो व्यक्ति इस सुबह यहाँ पर है। अब मैं संडे स्कूल का पाठ लूंगा। मैं अक्सर इसमें देर तक रहता हूँ। यहाँ कुछ है जो मेरे हृदय पर हलचल करता है। मैं नहीं जानता बीते कल से। अब हम यदि प्रभु एक विषय है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मैं नहीं जानता कितने समय और यहाँ पर हूँ। परंतु यहाँ कलीसिया में एक बड़ा प्रश्न है जिस पर लोगों में मतभेद है और भिन्न विचार हैं, जैसा कि सेब के खाने पर। और मैंने संदेश पर प्रचार किया और मैं विश्वास करता हूँ, दृढ़ता में वचनों से प्रमाणित कर सकता हूँ कि वो सेब नहीं था, समझे? भ्रम का कारण हुआ। इसलिए संभव है इसके पहले हम छोड़ें, हमें वापस जाना पड़ेगा 30 दिनों पीछे, आप जानते हैं, वापस एरिजोना को। और इस प्रकार यदि इसके पहले मैं छोड़ूं, प्रभु ने चाहा मैं वचन को लेना चाहूंगा और इसे टेप ना करें। यदि वे करते हैं, टेप को ना बेचें, इसे बाहर ना जाने दें। मैं विवाह और तलाक का वास्तविक सत्य को समझा देना चाहता हूं। ये एक प्रश्न है और ये अंतिम घड़ी है कि जब परमेश्वर के सारे भेद समाप्त हो जाने चाहिए। और बीते कल पहाड़ों में से आते हुए दिन के लगभग प्रतीत हुआ कि पवित्र आत्मा मुझसे कहता है, इसे टेप कर और अलग रख दे। मैं नहीं जानता क्यों, परंतु विवाह और तलाक का वास्तविक सत्य, उनमें से कुछ कहते हैं लोग विवाह कर सकते हैं यदि वे शपथ ले सकते हैं कि वे व्यभिचार में थे, और दूसरे कहते हैं भाई यदि वे एक दूसरे से दुर्व्यवहार करते हैं और वे एक साथ नहीं रह सकते, ये अच्छा है कि वे शांति से पृथ्वी पर रहें बजाय पृथ्वी पर नरक में रहें। और वे सारे विभिन्न प्रश्न, और कुछ उनका विवाह पुराने ढंग से करते हैं और कुछ उन पर पवित्र जल छिड़कते हैं और उन्हें वापस कर देते हैं, और वे कहते हैं उनका कभी विवाह नहीं हुआ था और उन्हें आशीषित करते हैं और उन्हें फिर से कलीसिया में वापस भेजते हैं। सब प्रकार का गड़बड़। परंतु यदि इतनी गड़बड़ी है तो कहीं तो सत्य है। मैं विश्वास करता हूं और आदर के साथ ये कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया है और मैं सत्य। और यदि ये कलीसियाओं के बीच में जाएगा, ये चीजों के टुकड़े कर देगा, संभव हो जो होना चाहिए। परंतु ये मैं चाहूंगा कि बल्कि पास्टर को, भाई जरा कलीसिया के पास्टरों को होने दो, टेप लें और उन्हें बजाने दें और तब वे वहां से अगुवाई कर सकते हैं। परंतु मैं इसे टेप करना चाहूंगा कि वास्तविक सच्चाई को दिखा सकूं। मैं विश्वास करता हूं इस घड़ी में जब ये भेद समाप्त होने हैं, पूरे हो गए, वे जैसा हमने कहा युगों से होते हुए वे प्रहार करते रहे टेपों के, जैसा कि हम उन सात मोहरों को लाए और सात कलीसियाई कालों को, और अब सात तुरहियों के समय के लिए सामना कर रहे हैं, और फिर कटोरे, और हो सकता है हम दो सप्ताहों की सभा रखें और उन दोनों को साथ रखें। मैं इसे टेप करवाना चाहूंगा और तब इसे छोड़ मैं यत्न कर रहा हूं कि इसका शोधन करूं और इससे कलीसियाई काल की पुस्तक बनाऊं, कलीसियाई युग की सात पुस्तकें, सात टेप, और इस प्रकार बनाए। हम इसे बहुत सस्ते में कर सकते हैं, जितना संभव हम कर सकते हैं ताकि हर कोई इसे पा सके। तब यदि प्रभु देरी करता है और मैं आगे बढ़ जाता हूँ, आप देखेंगे वे बातें जो मैंने प्रभु के नाम में होकर कही हैं घटित होंगी, जैसा कि ये कहा गया, कभी भी असफल नहीं हुआ, फिर भी मैं कुछ बाद में घटित होंगी। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमें ये सही प्रकार से करने देगा। एक समय हम लोगों को सूचित कर देंगे, क्योंकि बहुत से हैं जो यहां आकर उन बातों को सुनना चाहते हैं, और मैं उनकी सराहना करता हूं। यदि इसका कोई विश्वास नहीं करता या इसे सुनता, तो मुझे इससे क्या लाभ यहाँ खड़ा होकर इस विषय में कुछ कहूँ, समझे? ये तो पानी पर रोटी डालने के समान है। ये इस प्रकार होगा, यदि कोई भी इसका विश्वास नहीं करने जा रहा है, तो ये ऐसा होगा कि सूअरों के सामने मोती डालना। परंतु वहाँ हजार गुना हजारों जो इसका विश्वास करते हैं, समझे, और वे हर वचन को थामे रहते हैं, और हम अधिक से अधिक जितना संभव है लेंगे जब हम सभाओं के लिए तैयार होते हैं और प्रभु की महिमा के लिए, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें ये देगा। और मैं इसे तब तक नहीं लेना चाहता जब तक मुझे दिव्यता से इसे करने के लिए प्रेरित ना हूँ। परमेश्वर के पास हर चीज के लिए समय है, समझे? आपको उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यदि आप अपना गेहूँ पहले काट लेंगे और वे इसे मशीन में पकने से पहले डाल देंगे, तो आप अपने गेहूँ का बड़ा भाग खो देंगे, समझे? इसलिए जब हसिया लगने के लिए तैयार हो, परमेश्वर इसे लगाएगा, तब हम काटने को तैयार होंगे। परंतु मैं केवल जब मुझे इसका दबाव अनुभव होगा, इस प्रकार मैंने सोचा मैं से बाहर आ जाऊंगा थोड़ी देर में। कल सारे बीते समय मैं इसे अपने मस्तिष्क से हटा नहीं सका। सारी रात बीती, रात लगभग 12 बजे पलंग पर गया, लगभग 3 घंटे की नींद ली। इस रात से पहली रात और बीती रात मैं सो नहीं पाया। अब भी कुछ कहा, इसे टेप करें, विवाह और तलाक, समझे। इसलिए मैं प्रभु ने चाहा यदि वो मेरे हृदय पर बना रहा और प्रभु इस विषय में मुझे कुछ और दिखाएगा, तब मैं करूँगा। मैं इसे टेप कर सकता हूँ, समझे। परंतु स्मरण रखें, केवल सेवकों के लिए। आप आए और केवल सुने, परंतु स्वयं से टेप करें, होने दें, ताकि क्योंकि ये मंडलियों के बीच में चला जाएगा और कुछ इस प्रकार से और कुछ उस प्रकार से और अपना विचार बनाते हैं। और मैं चाहता हूँ सेवक भाई इसे अपने अध्ययन में लें और इसे वहाँ से आगे जाने दें, क्योंकि वे ही हैं जो उत्तरदायी हैं, वे ही हैं। जैसा कि जाकर और न्याय से खेल करें इनमें से कुछ अनुरक्षक। जी हाँ, देखिए प्रभु विवाह और तलाक के विषय में क्या कहता है। जैसा लोग सोचते हैं उससे ये अधिक, ये पवित्र है और ये ठीक सर्प वंश के साथ मेल खाता है। वही बात है, बस आगे बढ़ रहा है। ये वही भेद है। स्मरण रखें, सातवें दूत के दिनों में परमेश्वर के सारे भेद खुल जाएंगे, वे भेद भरी बातें जिसे प्रभु ने बंद रखा। अब जहाँ तक अब स्मरण रखें, 7:30 जब आप अपनी सभा आरंभ करते हैं। अब भाई नेविल, यदि आज रात्रि आपके पास संदेश है उसे प्रचार करें। देखिए, ये मुझे लगभग 1 घंटा या 45 मिनट नहीं लेगा और बाकी मैं टेप करूँगा। मैं भाई नेविल को सुनना पसंद करता हूँ, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, वो मेरा भाई है। मैं सोचता हूँ वो शानदार वक्ता है, बढ़िया सेवक। और मैं भाई नेविल के विषय में एक बात मैं पसंद करता हूँ, जब वो कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं उसे जीते हैं। अब ये विशेष बात है। अब आप जानते हैं, आप व्यक्ति के लिए एक अच्छा उपदेश जी सकते हैं बजाय कि उसे एक प्रचार करें, क्योंकि तुम अपने में एक लिखित पत्री हो, सब मनुष्यों के द्वारा पढ़े जाते हो। अब आइए, इसके पहले हम पन्नों को वापस पलटें, परंतु परमेश्वर को ये संडे स्कूल पाठ आरंभ करना है, इसलिए आइए उससे मांगे कि ये करे। स्वर्गीय पिता, हम विश्वास के द्वारा अपने भविष्य की ओर देखते हैं। अब मैं विश्वास से देख रहा हूँ किसी चीज के आगमन की ओर, प्रभु, इस पृथ्वी पर जो तेरे लोग एकत्र करने के लिए खींच रही है। जब हम नामधारियों कलीसियाओं को देखते हैं इतने नीचे जा रहे हैं और भिन्नता में जी रहे हैं, ये वास्तव में लोगों को बाहर कर रहे हैं, जैसा कि ये मिस्र में था, एक फिरौन उठ रहा जो यूसुफ को नहीं जानता, जैसा ये जर्मनी में था और रूस तक और इटली के लोग खड़े हुए, जोसेफ हिटलर और स्टालिन, मेसोलिनी, जिन्होंने यहूदियों से घृणा की, उन्हें अपनी मातृभूमि में वापस जाना था। परमेश्वर, आपके पास चीजें करने के लिए मार्ग है जो हम नहीं समझते, आप उन्हें आगे बढ़ाते हैं। जर्मन में कोई घर नहीं, उनसे हर चीज ले ली गई, इटली रूस में भी जाने को कोई स्थान नहीं, और उन्हें वापस उनके राष्ट्र में भेज दिया गया कि वचन पूरा हो। ओ परमेश्वर का प्रेमी हाथ, कैसे कभी कभी ये क्रूर दिखाई पड़ता है उस मार्ग में जब लोग कष्ट उठाते, परंतु ये अब भी यहोवा का कोमल हाथ जो अपने छोटे बालकों की अगुवाई कर रहा है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे कि मैं इस दिन में देखता हूँ नामधारी विश्वासियों पर दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें बाहर कर दें, ये कर रहे हैं कि उनका नाम उनकी पुस्तक में होना चाहिए या वे नाश हो गए। किसी और झुंड से कोई मतलब नहीं रखो, ये केवल यहोवा का कोमल हाथ जो उनकी अगुवाई जीवन के वृक्ष की ओर कर रहा है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक, मैं जानता हूँ कि वे चाहेंगे, क्योंकि ये आपका वचन है और ये असफल नहीं हो सकता, और हमारी अगुवाई जीवन वृक्ष की ओर हो, ताकि हम अनंत जीवन के अधिकारी हो सकें। परमेश्वर के हाथ को देखें और विश्वास की आंखों के द्वारा उन परछाइयों में जिनमें हम आज चल रहे हैं उससे आगे देखें, प्रतिज्ञा के देश को देखते हैं जो सामने ही है। अपने वचन को इस प्रातः आशीषित करें, प्रभु, ये थोड़े से पवित्र वचन और टिप्पणियां जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, होने पाए पवित्र आत्मा अब यहाँ पर आए, जैसा कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, अपनी जुबान और विचार, मस्तिष्क का खतना, और कलीसिया अपने कानों को समर्पित करे जो समझने वाले हैं, अपने हृदय और हम सब मिलकर कि आप हमसे अपने वचन में होकर बोलेंगे, क्योंकि आपका वचन सत्य है वचन के नाम में यीशु मसीह हम मांगते हैं, आमीन।
नाउ टर्न इन योर बाइबल्स टू द बुक ऑफ एक्सोडस।
अब अपनी बाइबलों में से निकालें निर्गमन की पुस्तक को, और अब मैं पढ़ना चाहता हूँ निर्गमन तीसरा अध्याय के वचन का एक भाग, 1-12। जरा ध्यान से सुने, जैसे कि हम निर्गमन तीसरा अध्याय 1-12। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिदान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने एक झाड़ी के बीच आग की लौ में उसे दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, इस पर मैं जोर देना चाहता हूँ, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने उसे झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊं। इसलिए अब सुन, इसराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिराउन के पास भेजता हूँ। आपने ध्यान दिया, मैं नीचे उतर आया हूँ, परंतु मैं तुझे भेज रहा हूँ। परमेश्वर मनुष्य के रूप में जा रहा है, जा। मैं 10वां पद फिर से पढ़ दूं। इसलिए आ, मैं तुझे फिराउन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिराउन के पास जाऊँ और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का तेरे भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए ये चिन्ह होगा जब तू निकल चुके, क्षमा चाहता हूँ, जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। इससे पहले ध्यान नहीं दिया, परंतु इस प्रातः गहराई में आत्मा की प्रेरणा अनुभव कर रहा हूँ। मैंने इसे तब ही पकड़ा, परमेश्वर अपने दास को वापस भेज रहा है जहाँ से वो भागा था। उसने इसे पहाड़ का चिन्ह दिया। अब तक से पहले कभी भी ध्यान नहीं दिया, ये तुम्हारे लिए अनंत चिन्ह होगा, समझे? अब इस प्रातः हम बोलने जा रहे हैं दूसरे निर्गमन के विषय पर, परमेश्वर के लोगों का या परमेश्वर के लोगों का बाहर बुलाया जाना। निर्गमन का अर्थ बाहर लाना, बाहर बुलाना, से ले जाना। और अब मैं इसे एक विषय के समान उपयोग करना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों का दूसरा निर्गमन। अब उनके बहुत से निर्गमन हुए निसंदेह, परंतु मैं उस समय पर बोल रहा हूँ कि परमेश्वर ने इसे निर्गमन कहा, एक अलगाव जहाँ वे पहले थे इस वर्तमान समय में। यहाँ परमेश्वर तैयार हो रहा है कि अपने दिव्य प्रतिज्ञा के वचन को पूरा करे जो उसने अब्राहम को दिया था और इसहाक और याकूब को। वर्षों सैकड़ों वर्ष बीत गए थे, परंतु फिर भी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं भूला। ऋतु और नियत समय परमेश्वर सदा अपनी प्रतिज्ञा को सही रखता है। इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी इस बाइबल में, वो इसे करने जा रहा है। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं कुछ और सोचने की कोशिश करें और कहें, भाई भविष्यद्वक्ता गलत था, हो सकता है गलत था, या ये इस दिन में घटित नहीं हो सकता। तब असंभव सा प्रतीत हुआ, आज से भी अधिक असंभव, परंतु परमेश्वर ने किया जो भी है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा दी है कि वो ये करेगा। और देखिए ये कितनी सादगी में करता है। मैं नीचे उतर आया हूँ, मैंने चिल्लाना सुना है, मैं अपनी प्रतिज्ञा याद करता हूँ और मैं इसे करने के लिए नीचे उतर आया हूँ और मैं तुझे भेज रहा हूँ, तू इसे कर, मैं तेरे साथ हूँ, निश्चय मैं तेरे साथ होऊंगा, मेरा कभी नहीं कभी ना असफल होने वाली उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। जहाँ कहीं तू जाएगा मत डर, समझे। मैं छुड़ाने के लिए नीचे आ रहा हूँ, मैं निश्चित हूँ कि आत्मिक विचार वाले इसे समझते हैं, समझे। मैं तुझे भेजने वाला हूँ कि मेरे लोगों को निर्गमन में ले आए, उन्हें बाहर बुला, मैं तेरे साथ होऊंगा। अब कैसे हम विश्राम कर सकते हैं, कैसे विश्वास इसे समझ सकता है जो वहाँ पकड़े हुए है, समझे। परमेश्वर इसे करने वाला है, उसने ये प्रतिज्ञा की है, कोई मतलब नहीं कैसे कैसी परिस्थिति है या कोई क्या कहता है, परमेश्वर इसे करने जा रहा है जो भी है, क्योंकि उसने इसकी प्रतिज्ञा की है। और वो ये इतनी साधारणता में करता है कि ये सभ्य विचार वाली समझ के ऊपर से निकल जाता है जो इस विषय में तर्क करने का यत्न करेंगे, ये कैसे हो सकता है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि एक मनुष्य एक अच्छे मजबूत मस्तिष्क के साथ अच्छी शिक्षा कि मनुष्य ये नहीं समझेगा, ये ठीक है और शानदार जब तक वो तर्क का प्रयोग नहीं करता, परंतु वो सभ्यता जो उसके पास है कि परमेश्वर का विश्वास करे, इसे सादगी में बदलने दें, सुने कि परमेश्वर ने क्या कहा है और इसका विश्वास करे, तब उसकी सभ्यता उसकी सहायता करेगी। ध्यान दें, परंतु जब तर्क का यत्न करता है ये नहीं किया जा सका, तब ये उसे परमेश्वर से दूर ले जाता है। निरंतर सारे समय जब वो ये सुनने का यत्न करता है कि उसकी अपनी समझ क्या है, समझे। यदि आप नहीं समझते और बाइबल एक निश्चित बात कहती है तो बस आमीन से विराम लगाएं, इसे बस वैसे ही चलने दें। अब बजाय इन वचनों का उल्लेख करने के आप इन्हें लिख सकते हैं इस संडे स्कूल के पाठ में, परंतु मैं चाहूंगा संभव है यदि आप इसे देखना चाहेंगे, परंतु पहले यहाँ मेरे पास बहुत से हैं। इसके पहले कि हम मालूम करें कि इस निर्गमन का क्या अर्थ है, और अब मैं निर्गमन को प्रतीक में करने जा रहा हूँ, तब निर्गमन अब निर्गमन के साथ, और ध्यान दें यदि ये ठीक समानांतर नहीं है, इनमें से एक स्वाभाविक है और बिल्कुल वही चीज जो उसने स्वाभाविक में किया वो इसे फिर प्रतीक में कर रहा है, विपरीत आत्मिक के एक आत्मिक निर्गमन। अद्भुत परमेश्वर के वचन को देखते हैं, कैसे कोई इस बात को कह सकता है या प्रेरणा में नहीं, ये लगभग 2800 वर्षों पहले आप जानते हैं, और कैसे उसने ये प्रतिज्ञा की और उसने क्या किया और उदाहरण के लिए उसे वहाँ पर रखा जैसे वो किसी चीज की छाया बनाता है कि वास्तविक की गवाही दे। आज रात्रि मैं इसी को लेता हूँ, चांद और सूरज के बीच में, प्रभु ने चाहा तो। परंतु पहले देखने के लिए उत्पत्ति का पुनरावलोकन करें, क्यों वे वहाँ मिस्र में थे, क्यों परमेश्वर के लोग उस देश के बाहर थे। परंतु कुल मिलाकर परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा दी ठीक जहाँ ये आरंभ था, अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ फिलिस्तीन में, परमेश्वर ने वो देश उन्हें दिया और कहा यही ये है, और फिर वे लोग क्यों नहीं उस स्थान में थे जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। आज का भी प्रश्न यही है, परमेश्वर ने हमें पेंतेकुस्त दिया है, उसने हमें प्रेरितों की पुस्तक दी, वो हमें पवित्र आत्मा देता है कि हमारी अगुवाई और पथ प्रदर्शन करे, वो हमें देश देता है। क्यों हम इससे बाहर हैं? क्यों कलीसिया इससे बाहर है? क्यों नहीं आज ये एक बड़ी मसीही कलीसिया नहीं है जो प्रेरित की पुस्तक के समान फिर से जी रही है, उन्हीं चीजों को ला रही है? इसका कोई कारण है। हम सब जानते हैं कि हम टूट गए हैं और हम भयानक स्थिति में हैं, और अधिक भयानक स्थिति कि मसीहत की कभी नहीं हुई जिसमें आज है, और हम ठीक किनारे पर या किनारे के एक महान भयानक न्याय जो कलीसिया के लिए रखा है, और पहले इसके न्याय हो सके परमेश्वर एक निर्गमन के लिए बुला रहा है जैसा कि उसने तब किया। अमोरियों का पाप ऊपर तक था, इसलिए वो बुला रहा है एक आत्मिक निर्गमन। अब आइए जरा एक क्षण के लिए पीछे चले प्रतीक में और देखें।
They went down in Egypt all because of the jealousy of a brother.
That's the reason. वे मिस्र में गए, कुल मिलाकर कारण भाई से द्वेष। यही कारण था कि इसराइल मिस्र में था, उस समय देश से बाहर सुन रहे परमेश्वर की प्रतिज्ञा केवल देश में टिके रहने पर थी। अब क्या आप देख सकते हैं कि हम प्रार्थना में क्या बोल रहे थे कुछ क्षणों पहले? क्यों परमेश्वर ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया कि लोगों को वापस प्रतिज्ञा के देश में रखे, इसके पहले कि वो उन्हें आशीषित कर सके, मसीहा को उनके पास लाए? कैसे उसने हिटलर के हृदय को कठोर किया कि यहूदियों के विरोध में, जबकि वो स्वयं आधा यहूदी था? कैसे उसने स्टेलिन में करना पड़ा मसलोनी? देखा, लोग जो प्रेरणा में नहीं हुए एक राष्ट्र के समान, वे परमेश्वर उन्हीं चीजों को लेता है जिनके द्वारा वे जी रहे हैं, राज्य का कानून, बहुत सी बार अपनी प्रतिज्ञा को सच्चा ठहराए। इसलिए उसने तानाशाहों का हृदय कठोर कर दिया कि यहूदियों को वापस प्रतिज्ञा के देश में भगा दे। इसे इसी प्रकार से होना है। अब हम पाते हैं कि नीचे जा रहा है यूसुफ। कहानी को हम जानते हैं कि जैसा कि हम उत्पत्ति में वापस जाते हैं, और आप इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने इसे लेने में थोड़ी देर कर दी कि आरंभ करूं इस संडे स्कूल के लंबे पाठ पर, और मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान दें, जब आप पढ़ सकते हैं यूसुफ की कहानी को, अपने सारे भाइयों के बाद जन्मा, अंतिम वाले से पहले, आत्मिक विचार इसे अभी समझ लेगा, बिन्यामीन था। परंतु इस निकाले जाने पर ध्यान दें, यूसुफ और बिन्यामीन सगे भाई थे, केवल वे जो दो सगे भाई थे। बिन्यामीन को पहचान नहीं मिली जब तक वो यूसुफ से न मिला, और उन सब बाकी के ऊपर बिन्यामीन को दुगना भाग मिला हर चीज का जो यूसुफ देता था। ठीक है, अब ध्यान दें, हम यहाँ पर पाते हैं कि वे थे, वो अपने भाइयों से अलग कर दिया गया क्योंकि वो आत्मिक था, वो एक महान पुरुष था, यद्यपि झुंड में सबसे नम्र, झुंड में सबसे छोटा, और उन्होंने बिना कारण उससे बैर किया। उनको उससे द्वेष नहीं रखना चाहिए था, उन्हें उसका सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने द्वेष किया क्योंकि वो एक भाई था। ठीक यही नहीं, उन्होंने उससे द्वेष किया क्योंकि परमेश्वर ने उससे अधिक व्यवहार किया, उन बाकियों से अधिक, समझे? उसने उसे एक आत्मिक समझ दी, वो सपनों का अर्थ बता सकता था जो घटित होता सिद्ध रूप में, ठीक वैसे ही जैसा वे थे, और उसने उल्हाने नहीं मारे। उसने उन पूलों का स्वप्न देखा, उसके पूले के सामने झुक रहे थे, तब उसके भाई उससे क्रोधित हो गए, कहा, मैं समझता हूँ तुम पवित्र शोर करने वालों, दूसरे शब्दों में कि हमें किसी दिन तेरे सामने झुकना होगा, परंतु ये इसी प्रकार से घटित हुआ, समझे? कैसे वे बड़े लंबे चौड़े कभी इस मामूली जन के सामने जो वहाँ खड़ा है झुके, परंतु वे झुके, निश्चय ही उन्होंने किया और दया की याचना की, परंतु वो अभी सामर्थ्य में नहीं आया था। आप देखिए, उस समय वो एक बालक के रूप में था, और तब हम पाते हैं इसके करने के द्वारा यूसुफ को उसके भाइयों के बीच से अलग किया गया, नामधारियों से, और अपने लिए अलग कर लिया, समझे? उसके भाई सारे राष्ट्र में, और तब वहाँ एक महान ऐसी बात आई। हम अनुभव करते हैं कि इज़राइल जब तक वे अपने स्थान में रहते रहे और बने रहे, अब ये एक अच्छी बात है कि स्थान में बने रहे स्थिति के अनुसार, ये ठीक बात है, परंतु वे आत्मा से अलग हो गए। आज मूलभूत स्थिति अनुसार जानते हैं कि वे क्या हैं, उस बाइबल के बुद्धि के विचार से, परंतु वहाँ आत्मा नहीं है। उन्होंने यूसुफ को अस्वीकार कर दिया, उसे छोड़ दिया, वे उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। ये पवित्र शोर करने वालों का झुंड है, ये हम इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। उन्होंने उसे निकाल दिया, उसे संसार को बेच दिया, वे अपनी संगति से बाहर निकल गए। अब ये करने के द्वारा वे अपने स्थान से हट रहे थे, मिस्र में जा रहे थे बाद में। अब ये द्वेष की कहानी भाइयों की निश्चय ही एक आत्मिक ओर की आज की तुलना है। हम सब इससे परिचित हैं। ये शुद्ध रूप से द्वेष है, शुद्ध नहीं, ये पुराना गंदा घिनौना द्वेष, समझे? द्वेष में कोई शुद्धता नहीं, समझे? ये कुछ नहीं, केवल घिनौना द्वेष है। जब वे उसी बाइबल को देखते हैं और उसी परमेश्वर के स्वभाव को जिसने बाइबल को लिखा, स्वयं को प्रमाणित किया और फिर उसे बिना कारण छोड़ दिया, शुद्ध भाई शुद्ध नहीं, जैसा मैंने कहा, ये गंदा द्वेष है। देख रहे हैं, परमेश्वर बीमारों को चंगा करता है, मरहुओं को जिलाता है, वही परमेश्वर जो चेलों के दिनों में रहा, वही सुसमाचार जो उन्होंने लिखा इस आत्मिक यात्रा के लिए, उसी परमेश्वर ने उन्हीं चीजों को किया। इसमें कुछ नहीं सिवाय द्वेष के, बाहर निकाल दिया और हम इसे अपने लोगों के बीच में नहीं लेंगे, समझे? इन्हें भगा दो। उन्होंने सोचा, भाई लोग, उन्होंने कभी भी इस प्रकार के मनुष्य का कभी उपयोग नहीं करेंगे, इसलिए क्यों ना इससे अलग हो जाओ। यही बात जो आज घटित हुई है। वे सोचते हैं कि क्योंकि हमारी कलीसिया बुद्धिमान हो गई है, हमारे पास सबसे अच्छे वस्त्र धारण करने वाली भीड़ है, सबसे बड़ी संस्था, बहुत चतुर सेवक, तो हमें पवित्र आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे कि ये पहले हुआ करता था। वे लोग पूरे हैं, दूसरे शब्दों में व्यवहार वचनों से अधिक तेज बोलता है, ये उनकी धर्म विद्यालय है, और उनके और उन लोगों के मस्तिष्क और उनका आपस का मिलना और इन बातों पर चर्चा करना अपने बुद्धिमानी विचारों के साथ अधिक योग्य है कि कलीसिया को व्यवस्थित करें, पवित्र आत्मा से अधिक अच्छा जो वो कर सकता है, इसलिए उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं। ये कुछ ऐसा है जिसकी हमें आज आवश्यकता नहीं है, इसके दिन अब चले गए। अब ये ठीक नहीं है, बीमारों को चंगा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास डॉक्टर हैं, हमें अन्य भाषा बोलने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं है, हम सब बुद्धिमान लोग हैं। और जब आप करते हैं तो आप जीवन की रेखा को अपने ढांचे से बाहर कर देते हैं। यीशु ने अपने दिनों में उन यहूदियों से कहा, क्या आपने ये नहीं पढ़ा, वो पत्थर जो विशेष कोने का पत्थर ठुकराया गया, जिस पर सारा भवन टिका हुआ है। अब आप देखिए मेरा क्या अर्थ है, मैं निश्चित हूँ आप ये समझ सकते हैं। इस समय इसका यही कारण है क्योंकि उन्होंने सोचा कि उन्हें इसकी कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें भाषा बोलने वाले की आवश्यकता नहीं है, हमें भाषा अनुवादक की आवश्यकता नहीं है, हमें पुराने नियम की भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता नहीं है कि हमें व्यवस्थित करें। पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये समझते हैं। समझे, उन्होंने मनुष्य द्वारा बनाई व्यवस्था अपना ली है कि पवित्र आत्मा का स्थान ले। इसलिए लोग हैं जो चुने हुए हैं, उनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में, वे इसके लिए नहीं जा सकते। वे आत्मिक समझ वाले हैं और इसलिए वे इसके लिए नहीं जा सकते, वे इसे सहन नहीं कर सकते। कोई मतलब नहीं यदि उनके पिता और माताएं इसमें रहे थे, उनकी जो भी संस्थागत कलीसियाएं थीं। जब एक कलीसिया बनती है, हो सकता है वे इसे सीधा स्पष्ट नहीं बोलेंगे, ओ नहीं, वे इसे साफ साफ नहीं बोलेंगे, परंतु उनका व्यवहार सिद्ध करता है। यहाँ प्रवचन है और पवित्र आत्मा उनके बीच में ये प्रमाणित करता है, जब वो उन्हें एक साथ एकत्र कर सकता है, कि वो अब भी बीमारों को चंगा करता है, मरहुओं को जिलाता है और भाषाओं में बात करता है और शैतानों को निकालता है। ये निर्भर करता है उस व्यक्ति के अंदर क्या है। जैसे कि श्रीमती ऑर्गन ब्राइट वहाँ पर हैं, उस दिन ये सोच रही थी, वहाँ चलते चलते कुछ घास के तिनके खींचते हुए, जब वो सामने की घास काट रही थी, मैं वहाँ से निकला उनके बराबर से, वो मुझे नहीं जान पाई, मैंने उन्हें करने दिया, मैं देख रहा था। अब ध्यान दें, पवित्र आत्मा अपने महान कार्य में कलीसिया अनुभव करती है, इसमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं है। कलीसियाएं आपको ये बता देंगी, और मनुष्य खड़ा हो सकता और आपको ऐसी बुद्धिमानी की बात बताता है, आपसे विश्वास करवा ले जा सकता है। अब चलिए थोड़ा वहाँ रुकें एक मिनट। क्या यीशु ने नहीं कहा कि दो आपस में इतने मिलते हुए होंगे, ये चुने हुए को धोखा दे देगा यदि ये संभव था। बुद्धि की बातें इतनी चिकनी चुपड़ी होती हैं कि ये लोगों को धोखा देगी। ये सुसमाचार, ये मनुष्य है जो वचन को इस प्रकार से बोलता है कि वो लगभग किसी बुद्धिमान व्यक्ति को, यदि आप बस उसकी बुद्धिमानी पर भरोसा करते हैं, वे पवित्र आत्मा को दोषी ठहरा देते हैं और मनुष्य के मार्ग को ले लेते हैं। हम ये देखते हैं। अब ये वही चीज है जो उन्होंने यूसुफ के विषय में सोचा और वे उससे अलग हो गए। और ओ मिस्र में, ओ कैसे हम सोच सकते हैं, कैसे मैं इस पर घंटों व्यतीत कर सकता था। आप यहाँ 3 वर्षों तक टिके रह सकते हैं और उस विषय को कभी नहीं छोड़ेंगे, दिन और रात, और अब भी पवित्र आत्मा की गिरी पा रहे हैं। आत्मिक मनोभाव वाले मिस्र में देख सकते हैं और देखते हैं सताव बढ़ रहा है। यूसुफ को देख सकते हैं, अलग कर दिया गया इस क्रम में कि सताव और बढ़ सके। और तब देखिए, परमेश्वर अपने पहिए के साथ पहियों में हर चीज घूम रही है, बिल्कुल सिद्धता में। देखिए, पोतीफर ने यूसुफ को अस्वीकार कर दिया, देखिए झूठ बोला गया, और देखिए यूसुफ जेल में था और उसकी दाढ़ी बड़ी हो गई, भाइयों के बीच में से निकाला हुआ, परंतु तब अचानक से परमेश्वर अंदर आ गया। समझे, कैसे हम पहियों को पहियों में देख सकते हैं, चल रहे हैं। परमेश्वर की महान योजना हर चीज को निर्गमन के लिए आगे बढ़ा रहा है। इस समय जब वो अपने लोगों को फिर वापस इस राष्ट्र में बुलाएगा, वापस स्थान में, उसी स्थिति में जहां वह उन्हें आशीषित कर सके, उनके बीच में एक को रख सके, जिसकी उसने प्रतिज्ञा दी है कि वो उनके बीच में रखेगा। उन्हें अपने देश में होना ही है, स्मरण रहे, उन्हें उस देश से जिसमें वे हैं बाहर आना ही है और प्रतिज्ञा के राष्ट्र में जाना है, इसके पहले उनका प्रतिज्ञा का मसीहा कभी आ सके। और कलीसिया को भी वही चीज करनी है, अस्वीकार करने वाले लोगों के झुंड में से बाहर आ जाए, प्रतिज्ञा में चले जाएं, इसके पहले कि मसीहा उनके सामने कभी प्रकट हुआ। आप ये देखते हैं, मसीहा का जीवन प्रकट किया गया, कलीसिया को तैयार किया गया। एक दुल्हन एक स्त्री पुरुष से विवाह करती है और उसके साथ असहमत हो रही है, ये एक प्रकार का निरंतर एक विवाद रहेगा। परंतु जब पुरुष और उसकी पत्नी, उसकी लड़की मित्र, उसके मंगेतर, जब वे लोग एक मत हैं, जैसे एक प्राण और एक विचार, क्योंकि वे एक देह होने जा रहे हैं, तब जब कलीसिया परमेश्वर के साथ एक सामंजस्य में हो सकती है, जब तक दूल्हा दुल्हन के अंदर से प्रकट न हो, क्योंकि वे एक होने जा रहे हैं। ओ, क्या ही महान पाठ है। ठीक है, अब स्मरण रखें, आत्मिक मनोभाव वाला इसे समझ रहा है, छाया प्रति छाया देख सकते हैं और इसे लेते हैं। एक के लिए हम इसमें घंटों जा सकते हैं। देखिए क्या घटित होता और क्यों हमने इन सारे वर्षों प्रतीक्षा की मरुद्यान के समय से। अब जानते हैं, बाइबल ये बोलती है, कलीसिया जंगल में भाग गई, जहां उसका एक समय तक पालन पोषण हुआ। और क्यों ये सब हुआ कि हम समझे, ये अब भी परमेश्वर के पहियों में है। क्यों परमेश्वर ने ये नहीं किया बहुत समय पहले, जब लोग पेंसिलों के साथ बैठे और स्त्रियां और समयों को मालूम करने का यत्न किया, जैसे जज रदरफोर्ड और उसमें से बहुत से कि यीशु 14 में आता है और मदर शिफ्टन और इसके और पहले और आदि आदि ये सारे समय। और देखिए, जब इसके द्वारा चलते हैं, किसके द्वारा उन्होंने कोशिश करी कि वचन से मालूम कर लें। देखिए, उन्होंने इसे नष्ट कर दिया। ये छिपा हुआ है, ये वास्तव में छिपा है। कैसे वचन अपने विरोध में जा सकता है, जब यीशु ने कहा, कोई भी मनुष्य उस घड़ी और समय को नहीं जानता। समझे, वे बस वचन के एक टुकड़े को लेते हैं और इसे थाम लेते हैं। आपको पूरी चीज लेनी चाहिए, तब यदि परमेश्वर उसमें है तो परमेश्वर उसे प्रकट करेगा कि ये यही सत्य है। जैसे दिव्य चंगाई, यदि ये सच नहीं है तो फिर ये सच नहीं है, परमेश्वर का इससे कुछ लेना देना नहीं। परंतु यदि वो इसे सच प्रकट करे तो फिर ये सत्य है। जैसे कि यीशु परमेश्वर ने कहा, यदि तुम्हारे बीच में एक है, एक भविष्यद्वक्ता या आत्मिक, मैं उससे बात करूंगा और जो वो कहता है घटित होता है, तो वो सुनना यही है। परंतु यदि उसकी भविष्यवाणी गलत है, तब परमेश्वर गलत नहीं हो सकता, वो अनंत है, वो असफल ना होने वाला सर्वशक्तिमान, और वो गलत नहीं हो सकता। इसलिए यदि मनुष्य बोल रहा है तो ये मनुष्य को ही दिखाएगा, यदि वो अपने ही वचन बोल रहा है ये असफल हो जाएंगे। परंतु यदि वो परमेश्वर का वचन बोल रहा है, ये असफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये परमेश्वर बोल रहा है, तो फिर उसकी प्रेरणा परमेश्वर से आती है और ये होगा। इसे तो सही होना है, परमेश्वर ने इसी तरह से बताने को कहा है। यही विधि है कि पुराने नियम में उसने कहा, यदि वे व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता के अनुसार ना बोले, ये इसलिए कि उनमें जीवन नहीं, उनमें उजियाला नहीं। ठीक है, उन्हें व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के अनुसार ही बोलना है, और एक भविष्यवाणी या कोई भी चीज वचन के अनुसार होनी चाहिए। यदि ये नहीं है, ये गलत है। समझे, अब हम पाते हैं कि ये सब हो चुका, क्योंकि प्रतीक्षा की गई, बेदारियां, मेथोडिस्ट और लूथरन, बैप्टिस्ट, कैम्पवेलाइट और वे विभिन्न, उनके यहाँ महान बेदारियां हुई, नाजरीन, पिलग्रिम होलीनेस, पेंटिकॉस्टल्स, सब में महान बेदारियां, परंतु महान निर्गमन नहीं आया। क्यों? परमेश्वर ने अब्राहम को बताया वो ठीक उसे देश में रखेगा, परंतु अमोरियों का पाप अभी पूरा नहीं हुआ, और परमेश्वर ने धैर्य से प्रतीक्षा की। वे लोग समाधान की कोशिश कर रहे थे, वे पवित्र वचन देख सकते थे, किसी चीज में जा सकते थे, किसी चीज में चले गए। उन्होंने कहा, ये ही दिन है, यही समय है, परंतु आप ये समझने में असफल रहे कि अमोरियों का पाप अभी पूरा नहीं हुआ। 400 वर्षों उन्होंने मिस्र में यात्रा की और बाहर निकाले गए, परंतु वास्तव में वे 440 वर्ष वही रहे, भविष्यद्वक्ता को अस्वीकार करने के कारण। उन्हें अगले 40 वर्ष और कष्ट उठाना पड़ा वहाँ उस जंगल में, इसके पहले परमेश्वर उन्हें निकाल कर लाए। मूसा वहाँ जंगल में 40 वर्ष था, इसके पहले कि उन्हें छुड़ाने को वापस आता। आप देखिए, 40 वर्ष के अधिक समय में गए क्योंकि उन्होंने संदेश को ठुकराया था। अब परमेश्वर के यहाँ 40 वर्ष लगभग आधा मिनट के हैं हमारे समय से, इतना अंतर है। 1000 वर्ष केवल एक दिन, समझे, एक मिनट भी नहीं होगी। मुश्किल से इस पर ध्यान दें। अब हमें देरी हो रही है, क्यों? परमेश्वर सहने वाला और प्रतीक्षा कर रहा है, देख रहा है। लूथरन को बेदारी में उठने दो, तब संगठित हो गए। मेथोडिस्टों को बेदारी में उठने दो, संगठित। जॉन स्मिथ बैप्टिस्ट कलीसिया बड़ी बेदारी के साथ उठी, संगठित। पेंतिकोसनों को सुधार और वरदानों के साथ उठने दो, संगठित हुए। जब तक कि पाप पूरा हुआ तब परमेश्वर उकता गया, तब निर्गमन आता है। और हम ये देखते हैं कि लोग अपने में समय के बहाव में पलट कर देख सकते हैं कि चीजें श्रापित हैं। वे खूंटी और बाबुल का अच्छा कपड़ा फिर लेते हैं, और यही बात है कि लोगों के बीच में श्राप है। जब मनुष्य अपना ही विचार घुसाना चाहता है चीजों के विषय में, हमें वचन के साथ ही बने रहना है। यही परमेश्वर की आज्ञा थी, नगर की किसी भी वस्तु को न छूना। वो श्रापित नगर है, मत छुओ, उसे छोड़ दो। और अकन ने सोचा कि वो सोने की खूंटी ले सकता है और सुंदर ढंग से शानदार संसार के समान जीवन बिता सकता है, और बाबुल का अच्छा वस्त्र। ओ अकन, लोगों पड़ाव में है, समझे? परंतु चीज श्रापित है और ये निरंतर श्रापित है। ये नीसियन सभा से ही श्रापित है, नीसियन रोम सदा से ही श्रापित है। परंतु परमेश्वर पापों को पूरा होने दे जब तक कि अमोरियों का लगभग भरने को है। और अब कोई भी आत्मिक समझ के साथ स्मरण रहे, मैं आत्मिक समझ का उल्लेख बराबर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इस देश का पाप का घड़ा भर गया है। वो संगठित और फिर से संगठित है, और संगठित और संगठित, और अब वो संघात्मक और किसी चीज के साथ जुड़ी हुई। पाप पूरा हो गया, ये निर्गमन का समय है, प्रतिज्ञा के देश को बुलाहट का समय है। न कि प्रतिज्ञा बस एक दूसरा देश जाने को, परंतु एक घर, सहस्र शताब्दी बाहर बुलाने का समय। इस राष्ट्र का पाप आज रात्रि इस पे फिर से प्रहार, प्रभु ने चाहा, भर गया, वो गंदी है। आप कहते हैं भाई ब्रणम, वो राष्ट्र जिसमें आप रहते हैं? जी हाँ श्रीमान, निश्चय ही। आप कहते हैं संयुक्त राज्य के एक नागरिक के समान आपको ये नहीं कहना चाहिए, तो फिर एलिया को इजराइल पर श्राप नहीं बुलाना चाहिए। और तब जब वो स्वयं ही इजरायली है, बाकी भविष्यद्वक्ताओं को कभी राष्ट्र को श्रापित नहीं करना चाहिए जिसकी अधीनता में वे इजरायली थे। परंतु उन्होंने कभी भी अपने विचार नहीं बोले, परंतु प्रभु का वचन, समझे? निर्भर करता है कि आपकी प्रेरणा कहाँ से आ रही है, निर्भर करता है ये कैसे आ रही है। यदि ये वचन के विपरीत है, इसे छोड़ दें। मैं कहता हूँ कोई सिद्ध करे ये वचन विरोधी है। क्या बाइबल ने नहीं कहा प्रकाशित वाक्य 13 में, यहीं जहाँ ये राष्ट्र प्रकट होता है, इस राष्ट्र का नंबर 13 है, एक स्त्री का देश। बाइबल में ये स्त्री है, हमारे सिक्के पर स्त्री है, ये स्त्री का देश है। यही जहाँ स्त्रियों की सड़ाहट आरंभ होती है, जहाँ ये समाप्त होती है। सड़ाहट अदर में आरंभ हुई परमेश्वर के वचन का अविश्वास करने के द्वारा। यही जहाँ से ये स्त्री प्रचारक और सारी चीजें आरंभ हुई। संसार की गंदगी हॉलीवुड से निकल कर आई। संसार का सबसे खराब राष्ट्र, अधिक तलाक, सारे संसार से मिलाकर, समझे? क्यों? आप इन्हीं किन्हीं दिनों में पाएंगे, प्रभु ने चाहा, आप देखेंगे क्यों ये शरापी चीज। आप इस तलाक के अंधेपन को देख सकते हैं, ये चीज शैतान ने लोगों की आंखों पर डाल रखा है। हम लोग भयानक घड़ी में हैं, हमारा अंत लगभग पास ही है, मैं विश्वास करता हूँ। वे सड़े हुए हैं, जड़ से सड़े हुए। ये प्रकाशित वाक्य 13 में प्रकट होती है, नंबर 13। और स्मरण रहे, ये एक मेमने के समान उठा, धर्म की स्वतंत्रता, परंतु तब इसने पशु से सामर्थ्य प्राप्त की, इसके समान मूर्ति, और वो पूरे अधिकार के साथ बोला, और वही सड़ाहट की चीजें की जो पशु ने इसके सामने की। तब मुझे बताएं, ये इस राष्ट्र के विषय में भविष्यवाणी नहीं है? एमोरियों की दशा बस पकने पर ही है, क्योंकि वे पहले ही इसमें कार्य कर रहे हैं। और हमारा नया पोप भी, उसका विशेष उद्देश्य भाइयों को एक साथ मिलाना और स्वाभाविक आंख, ये चीज करने की, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में यह पवित्र आत्मा के विरोध में हम इसके साथ नहीं मिल सकते थे और हर कलीसिया को संघ में बुलाया जाएगा, इस चीज से बाहर आ जाओ जितनी जल्दी आप आ सकते हैं। आप पशु की छाप को ले लेंगे न जानते हुए कि आप क्या कर रहे हैं, इससे बाहर आ जाएं। मैं आशा करता हूं कि आत्मिक समझ इसे समझ सकती है। मैं निश्चित हूं आप समझते हैं, परंतु मैं वहां घूमा हुआ हूं। जो भी है, आप हर राष्ट्र में नहीं जा सकते, आप इसके टेप भेज सकते हैं। परमेश्वर के पास मार्ग है कि उस समझ को पकड़ ले कि कहां वो बीज बोया गया है। ठीक है, और जैसे ही उजियाला उसे प्रभावित करता है, ये चला गया, जीवन लेता है। उस छोटी स्त्री के समान जो कुएं पर थी, उसने कहा ये यही है, उसने पकड़ लिया। इस चीज से बाहर आ जाए, ये श्रापित है, श्रापित। मुझे बताए कहीं कभी कोई गिरा और फिर उठा, मुझे बताए कभी कोई उठा जो गिरा नहीं। इसलिए आप देख सकते हैं कि चीज गलत है। ठीक है, अभी पाप का घड़ा भरा नहीं था अमोरियों का, इसलिए उन्हें रुके रहना था और निर्गमन से पहले प्रतीक्षा करनी थी। परंतु जब अमोरियों का पाप पूरा हो जाएगा, तब वहाँ आत्मिक निर्गमन आएगा या स्वाभाविक निर्गमन, कि लोगों की अगुवाई स्वाभाविक देश में करे। जहाँ एक समय स्वाभाविक अमोरी रहते थे, उसे अपना देश कहते थे। अमोरी नामधारी का अधर्म अपने आप को कलीसिया कहते हैं, जहाँ तक हो, जब तक कि उनका पाप पूरा होने पर है। एक निर्गमन आ रहा है जहाँ परमेश्वर दिखा देगा कौन कौन है, जहाँ कलीसिया स्वयं यीशु मसीह की दुल्हन बाहर निकल जाएगी उस देश में जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं इस स्थान में। आपको वहाँ जाकर लड़ाई नहीं करनी है जैसा उन्होंने की, ये तो पहले ही तैयार है। यदि ये पृथ्वी का डेरा गिरा दिया जाएगा, तो हमारे पास पहले ही एक है जो प्रतीक्षा कर रहा है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी होगे। महान निर्गमन समीप है। ध्यान दें, परमेश्वर ने वो निर्गमन कैसे किया, क्या वो उसने क्या तैयारी की, और एक मिनट अध्ययन करें, तब आज देखें। ठीक है, ध्यान दें, निर्गमन के पहले वहाँ एक फिरौन उठा जो यूसुफ को नहीं जानता था, समझे, एक फिरौन जो यूसुफ को नहीं जानता था। यूसुफ को नहीं जानता था, यूसुफ किसका प्रतिनिधित्व है इस आत्मिक निर्गमन में, आत्मिक भाग। अब वहाँ उठा, हम स्वतंत्र। एक समय तक वो स्त्री पाली गई और आधे समय तक, परंतु अंततः एक उठा, एक या एक फिरौन तानाशाह जो धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं जानता था, उन्हें एक साथ जमा किया। इसे निकालने ना दें। एक समय आया जहां फिरौन था, पहले आना था, और संस्थाएं संपन्नता में रही, वास्तविक मसीहत की दाखलता में सांटी हुई, परंतु ये अब भी अपने मूल फलों को ला रही थी। स्त्रियां आधे कपड़े पहने हुए, मनुष्य बुद्धिमान और आत्मा की सामर्थ का इनकार करने वाले, परंतु ये मसीह कलीसिया के नाम में जीवित रही, ये सांटी हुई दाखलता। परंतु किसान अब आ रहा है, दाखलता को छांटे, जैसा कि उसने कहा वो करेगा। वे सब जिनके पास फल नहीं है काटी गई और आग में डाली गई और भस्म हो गई। ये कहना भयानक बात है, परंतु कभी कभी सत्य भयानक प्रतीत होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, कैसे परमेश्वर अपने बालकों को गहरे पानी में से ले गया, कीचड़ वाली रेत और चीजें, वो इसी प्रकार से करता है। स्मरण रहे, वो बर्तन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए, घिरनी छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर से ढाला जाए, फिर से मिट्टी में। भयानक सी बात दिखाई पड़ती है कि इसे नष्ट कर दे, परंतु इसको इसी प्रकार ही जाना है। उस बर्तन को फिर से बनाने की प्रक्रिया में फूलदान या आप जो भी बना रहे हैं। एक फिरौन वहाँ पर जो उठ खड़ा हुआ, जो यूसुफ को नहीं जानता था, और आरंभ का आरंभ था, ये निर्गमन का आरंभ था। और जब उस बात ने रूप लेना आरंभ किया, एक राजनीतिक सामर्थ्य की अधीनता में रूप लेना आरंभ किया, परमेश्वर ने तैयारी आरंभ कर दी। अमोरियों का पाप पूरा हो गया था, वो समय जिसकी प्रतिज्ञा अब्राहम से की पूरा हो गया, और छुटकारे का समय निकट था।
permitted a Pharaoh to raise up who knew not Joseph.
और परमेश्वर ने फिरौन को उठने की अनुमति दे दी जो यूसुफ को नहीं जानता था, और रमेसे ने जन्म लिया, और सेती के ठीक बाद रमेसेस आया, और रमेसेस वो था जो यूसुफ की आशीषों को नहीं जानता था। और उसे नहीं मालूम कि आत्मिक क्षेत्र क्या है, तो केवल निपुण राजनीतिज्ञ था जो इथोपिया को ले सका, और बाकी बचे राष्ट्र सैनिक सामर्थ्य में, और वो यही जानता था सैनिक ताकत। और मैं सोचता हूँ यदि कोई व्यक्ति आत्मिक था, देख सकता था कि क्या घटित हो रहा है। अब हमें एक फिरौन मिल रहा है जो धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं जानता। जब हमारे राष्ट्रपति ने अपना कार्यभार संभाला, वो ये शपथ नहीं खाएगा कि वो धार्मिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है। उस दिन के विषय में क्या है जब उसके सामने ये अलगाववाद का प्रश्न था, नीचे दक्षिण में, जब अलाबामा का ये गवर्नर, मेरी इच्छा थी कि मैं उस सेवक से बात कर सकता, वो मार्टिन लूथर किंग। वो मनुष्य कैसे अगवा हो सकता है और अपने लोगों को मृत्यु के फंदे की ओर अगवाई करे। यदि वे लोग बंधुआई में थे, मैं कोट उतार के वहाँ नीचे होऊंगा, उन लोगों के लिए पिट रहा होता। वे लोग गुलाम नहीं हैं, वे नागरिक हैं, वे राष्ट्र के नागरिक हैं। विद्यालय जाने का प्रश्न, वे लोग यदि उनका हृदय कठोर है और उन बातों को नहीं जानते, आप लोगों में नहीं डाल सकते आत्मिक बातें। उस राजनीतिक शक्ति के साथ उनमें क्या धड़क रहा है, उन्हें ये स्वीकार करना ही होगा कि फिर से जन्म लें, तब वे इन बातों को देखेंगे। परंतु ये मनुष्य, यदि मैं उससे बात कर सकता होता, उन बहुमूल्य लोगों की अगुवाई कर रहा है धर्म के नाम पर मृत्यु के फंदे में, जहां वो उन हजारों गुना हजारों को मरवाए जा रहा है, वे नहीं, उन्हें केवल स्वाभाविक पक्ष मिला है। ये व्यक्ति अश्वेत भाई, जब लुविल में वो महान पक्ष मिला है, उस समय मैं वहां पर था जब वहाँ एक अश्वेत सेवक था, बहुमूल्य बूढ़ा भाई वहाँ खड़ा हुआ और बोला, नागरिक सेना से पूछो क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ, वे मेरे लोग हैं। और ये बूढ़ा सेवक वहाँ पर खड़ा हुआ बोला, इस सुबह मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपने रंग से कभी भी लज्जित नहीं हुआ, मेरे बनाने वाले ने मुझे बनाया है जो मैं हूँ। वो उसे वैसे ही रहने देना चाहता है, ऐसे ही वो हर मनुष्य को रखना चाहता है। उसने सफेद फूल बनाया, उसने नीले फूल और सारे रंग बिरंगे फूल, उनको मिश्रित ना करें, उन्हें ना मिलाएं, आप प्रकृति के विरोध में हैं। उसने कहा, मुझे अपने रंग पर लज्जा नहीं आती। आज सुबह तक उसने कहा, जब मैं अपने लोगों को उठते हुए देखता हूँ, उन चीजों को कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, अब उसने कहा, मुझे उन पर इस बात से लज्जा आती है। मैंने सोचा, परमेश्वर उस आवाज को आशीष दे। उसने कहा, आप केवल परेशानी का कारण हो। कहा, यहाँ विद्यालय को देखें, यदि हमारे पास विद्यालय नहीं थे, कहा, तो ये भिन्न बात होती, परंतु यहाँ लुविल में सबसे अच्छे विद्यालय किसके पास हैं? कहा, चलिए उदाहरण के लिए देखते हैं, हमारा नगर शेरपोर्ट। कहा, वहाँ पर एक श्वेतों का विद्यालय है, ये पुराना विद्यालय है, उन्होंने हमारे लिए दूसरा बनाया। उनके पास एक चीज नहीं है बालकों के लिए, एक चीज खेलने के लिए, हमारे पास भरपूरी से है। और इसे छोड़, उन्होंने हमारे लिए एक बड़ा संगमरमर का तालाब तैरने के लिए, हमारे बालकों के लिए बनाया, और हमारे पास सबसे अच्छे शिक्षक जो हो सकते हैं। आप क्यों वहाँ पर जाना चाहते हैं जब यहाँ हमारे पास अच्छा है? आपके साथ क्या बात है? उसने कहा, और वे लोग, वे वाह, उन्होंने आवाज को दबा दिया, आप वही हैं, देखिए, गलत प्रेरणा। वे लोग गुलाम थे, वे लोग मेरे भाई और बहने हैं, वे गुलाम थे, मैं कहूँगा हम उनके साथ मिल जाएं और सड़कों पर होकर निकलें और बातों का विरोध करें। वे लोग गुलाम नहीं हैं, वे नागरिक हैं, उसी अधिकार के साथ जो किसी और के पास है। ये प्रेरणा का ढेर नरक से आ रहा है कि लाखों लोगों को मारने का कारण बने, उन्होंने एक क्रांति आरंभ की है। निश्चय ही ये है, ये ठीक नहीं है। पुरुषों और स्त्रियों के अपने अधिकार हैं, हमारे अश्वेत भाई और हमारी जापानी लोग, और वे पीले, सफेद, काले, और वे जो भी हों, परमेश्वर के द्वारा उनमें कोई रंग की भिन्नता नहीं है। हम सब एक मनुष्य से आए हैं, आदम, परंतु यदि परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया और विभिन्न रंगों में कर दिया, हम उसी प्रकार बने रहें। यदि मैं एक पीला मनुष्य था, मैं जापानी ही बना रहना चाहूंगा या चीनी। मैं एक अश्वेत पुरुष या मैं वैसा ही रहना चाहूंगा। परमेश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है। निष्कपटता पूर्व रंग जाति के विषय में बहुत कुछ है कि श्वेत जाति होनी चाहिए, उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। वे लोग अधिक आत्मिक हैं, उनके विषय में हजारों बातें हैं जिन्हें श्वेत मनुष्य छू भी नहीं सकता। परमेश्वर ने उन्हें ऐसा ही बनाया है। कौन कभी अश्वेत गायन मंडली से अच्छा गा सका? आप आवाजों को कहाँ पा सकते हैं? मैंने उन्हें देखा, कहीं दूर देश से आए, नहीं मालूम कि सीधा और उल्टा हाथ क्या है। उनकी 30 या 40 विभिन्न जातियाँ और वे एक स्थान में गाते हैं। गुरु लोग वहाँ कर खड़े होकर कहते हैं, मैं इस तक नहीं पहुँच सकता। उसने वर्षों गायन मंडलियों को प्रशिक्षण दिया और एक एक स्वर ऊँचा होगा और नीचा और सारी बातें कहा, इसे सुने एकदम सिद्ध, यहाँ तक कि विभिन्न भाषाओं में इन्हें वरदान मिला हुआ है। परंतु आप देखिए, ये सारी चीजें होनी ही हैं, सब राजनीतिज्ञों के कारण जिन्होंने अपनी धोखेबाजी यंत्रों के द्वारा चुना है। उस दिन जब वहाँ गवर्नर खड़ा हुआ था, शपथ लेकर चुना गया उस कार्यस्थल के लिए लोगों के द्वारा, संविधान के अनुसार अलगाववाद के प्रश्न पर कि प्रत्येक प्रांत इस विषय में अपना विचार ले सकता है, उसने चिंता नहीं की। परंतु अपने संविधान को पढ़ा, कहा अब विद्यालय अलगाववाद के लिए पक्ष ले रहा है। वहाँ उनके पास विद्यालय है और केवल दो अश्वेत बालक वहाँ विद्यालय में जाना चाहते हैं, जबकि उनके पास उनके अपने कॉलेज हैं। परंतु वो खड़ा हुआ और बोला, क्या यहाँ तक कि उसने संविधान को भी पढ़ा। तब जब ये इस व्यक्ति के पास वापस आया, हम यहाँ पर हैं जो यूसुफ को नहीं जानता, स्वतंत्रता उन अश्वेत मतों को खींच रहा है और नहीं जानते हुए कि ये रिपब्लिकन दल था जिसने इन्हें स्वतंत्रता दी, पहली बार अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बेच रहे हैं इस प्रकार की चीज के लिए कि उन्हें मृत्यु के फंदे पर ले जाए, ये दिखाने के लिए मनुष्य द्वारा बनाई गई हर व्यवस्था को गिरना ही है। बिल्कुल ठीक बात है। और श्री कैनेडी ने इस कवच का राष्ट्रीयकरण कर दिया और उन लोगों को ठीक उनके पूर्वजों के सामने खड़े होने के लिए वापस भेज दिया उस विधान में, कि उस विधान को फिर तोड़ा। कहा, हम नहीं लड़ेंगे श्रीमान, और कहा, मैं आशा करता हूँ राष्ट्र पा सकता है। अब हम और लोकतंत्र की अधीनता में नहीं है, परंतु सैनिक तानाशाही में। अब जानते हैं, पुरानी कहावत है, एक समय दक्षिण के लोकतंत्री सदा, अब मैं नहीं जानता। ओ, निश्चय ही एक मनुष्य में पर्याप्त चेतना होगी कि किसी चीज के लिए जागे, समझे। उन बहुमूल्य लोगों को छोड़ दें, वहाँ उन्हें ना मारे, जैसे पीछे उसने उस भाई को गोली मार दी उस रात्रि बंदूक से, और उसके छोटे बच्चे और पत्नी घर में थे। मैं चिंता नहीं करता ये कौन है, ये नीचा और छोटा। जी हाँ श्रीमान, उस मामले में न्यायी होना एक समय। ओह, उस मनुष्य को गोली मार दी जो अपनी पत्नी और बच्चों के पास घर आ रहा था। वो एक नागरिक है, जो वो सोचता है कि ठीक है, उस पक्ष पर होने के लिए उसका अधिकार है, एक अच्छा मनुष्य। लाइफ पत्रिका में चित्र है, वो छोटा लड़का अपना पिता के लिए रो रहा है और कोई विश्वासघाती गोली मारने के लिए झाड़ी में छिपा है। जब आप मसीह को अस्वीकार करते हैं तो यही है जो आप पाते हैं। ये ठीक बात है, यही जहां पूरे राष्ट्र को आना है। ये सब राजनीति में, ये ऐसी लज्जा की बात, परंतु यही जो हमने चाहा। इस चुनाव में हमने यही प्रमाणित किया है। आज सुबह मेरे लड़के ने मुझसे कहा, पापा, पूर्वज तीर्थयात्री जब वे यहाँ पर आए, वहाँ से वे सब थे इस निश्चित नामधारी कलीसिया के, क्या वे सब थे? कहा, उनके पास वे बड़े लबादे थे। मैंने कहा, नहीं प्रिय, वे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आए, यही जिसके लिए वे यहाँ आए कि ऐसी चीज की अधीनता से बाहर आ जाएं। आप देखिए अब वे कहाँ आ गए, दर्शाता है कि इस राज्य को गिरना ही है, मुझे जल्दी करना चाहिए। एक बात मैं प्रार्थना करता हूँ कि भाई मार्टिन लूथर किंग निश्चित ही जल्दी जाग उठेगा। वो अपने लोगों से प्रेम करता है, उसमें संदेह नहीं, परंतु यदि वो बस केवल देखता, उसकी प्रेरणा कहाँ? आपको क्या लाभ यदि आप विद्यालय गए और वहाँ पर लाखों मरे पड़े हैं, क्या विद्यालय जाना चाहेंगे? वैसे ही अब भूख के लिए, यदि ये किसी और चीज के लिए गुलाम था, मनुष्य शहीद हो जाएगा कि अपना जीवन इस कारण के लिए दे, एक योग्य कारण, और ये एक योग्य कारण होगा, परंतु बस विद्यालय जाना, मैं ये नहीं देखता, समझे। मैं नहीं समझता कि पवित्र आत्मा इसके साथ सहमत है, इस बात पर बिल्कुल नहीं। ये लोगों को इस पर कार्य करना है, उस शोरगुल का झुंड आप देखिए, जिस प्रकार से हिटलर ने जर्मनी में किया, उसकी अगुवाई सीधे मृत्यु के जाल में की, वे मूल्यवान जर्मनी और वे करोड़ों में पड़े हैं या लाखों एक दूसरे के ऊपर ढेर लगा है, और ये बिल्कुल वही चीज है। और याद रहे, मैं टेप पर हूँ, हो सकता है मेरे चले जाने के बाद ठीक यही घटित होने वाला है। वे मूल्यवान लोग मक्खियों के समान मारे जाएंगे, एक क्रांति को आरंभ करते हैं, श्वेत और अश्वेत दोनों फिर लड़ेंगे और मक्खियों के समान मरेंगे। जब ये सब हो जाएगा आपको क्या मिलेगा? मरे हुए लोगों का ढेर। परंतु वहाँ एक फरौन उठ खड़ा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, आज भी वैसा ही है। एक मनुष्य उठा और व्हाइट हाउस में शपथ ली, जो अपनी शपथ दृढ़ता पूर्वक नहीं लेगा, वो अपनी शपथ नहीं लेगा कि वो धार्मिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है। ये नया पोप क्या कह रहा है? एक, चार बातें जो कि उसमें से एक, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों का एक साथ जोड़ना, और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति करने के लिए यही चीज है। परंतु बाइबल के अनुसार ये करना गलत बात है, और बाइबल ने कहा वे करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस समय मिस्र में रेमेसिस बड़ा हो रहा है, उसकी सामर्थ बढ़ रही है। स्वाभाविक मनुष्य रेमेसिस बड़ा हो रहा था, वो स्वाभाविक मनुष्य मसीह विरोधी अब बड़ा हो रहा है। राजनीति से होते हुए वो व्हाइट हाउस में पहले ही पहुंच चुका। धर्म में उसने लोगों को इतना संकोची कर दिया जब तक कि वास्तव में वे इसके लिए गिर पड़ेंगे। और नामधारी नेता लोग व्यवहारिक रूप में हर कलीसिया जो यहाँ राष्ट्र में है वो पहले ही कलीसिया संघ में है। रेमेसिस बड़ा हो रहा है और वे सब एक साथ जुड़ रहे हैं, और यही उन्हें करना है। और ये क्या करता है? ये सामर्थ को बनाता है एक पशु पहले वाले के समान। तो वहाँ सताव है जो उन सब पर आ रहा है जो इनके साथ नहीं जुड़ेंगे, और एक बहिष्कार। तब बहुत देर हो जाएगी, आप पहले ही छाप ले चुके। मत कहें मैं ये तब कर लूंगा, अच्छा हो कि आप इसी समय कर लें। रेमेसिस बड़ा हो रहा था, परंतु याद रखें, जब रेमेसिस अपनी सामर्थ में मिस्र में बड़ा हो रहा है, परमेश्वर के पास मूसा जंगल में है, वो भी बड़ा हो रहा है। रेमेसिस के पास राजनीतिक व्यवस्था है, परमेश्वर के पास आत्मिक व्यवस्था, एक भविष्यद्वक्ता की अधीनता में आने के लिए तैयार कि लोगों से बात करे। वे दोनों फिर से बड़े हो रहे हैं। ये एक प्रदर्शन होगा इन्हीं किन्हीं दिनों में। समय अब दूर नहीं है जब ये प्रदर्शन सामने आएगा। स्वाभाविक की तरह जैसा वचन कहता है, स्वाभाविक आत्मिक का प्रतीक है, आप इससे बच नहीं सकते। यही ये है, ये ठीक आपकी आंखों के सामने है, ये सत्य है। अब कलीसियाओं को देखें, अब बुला रहे हैं, सामर्थ में आ रहे हैं, पवित्र आत्मा नीचे आ रहा है, परमेश्वर के भेद खोले जा रहे हैं और क्रम में व्यवस्थित हैं, समझे? और ठीक यहाँ वो पहले ही व्हाइट हाउस में है, और कलीसियाएं आपस में मिल रही हैं, आमीन, ना कि नामधारी पापों के बंधन से बाहर, अमूरियों से दूर, एक लोग जो स्वतंत्र हैं। ओ परमेश्वर के पास मूसा, उसका भविष्यद्वक्ता होने के लिए, यद्यपि उसने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी है और ये सिद्ध कर दिया कि वो ठीक था, परंतु फिर भी वो जंगल के विद्यालय में था, सारे संसार से छिपा हुआ, परंतु वो सिखाया और प्रशिक्षित किया जा रहा था वहाँ जंगल में। शत्रु सदा अपनी व्यवस्था को प्रस्तुत करेगा और अविश्वास इसे स्वीकार करेगा, क्योंकि शत्रु एक बुद्धि का चिन्ह है। अब याद रखें, वहाँ केवल दो ही हैं, इसे ना भूलें, केवल दो ही सामर्थ हैं, एक आत्मिक सामर्थ पवित्र आत्मा की, दूसरी शैतान की जो बुद्धि की शक्ति से कार्य करती है, क्योंकि वहीं से वो प्रवेश करता है अदन की वाटिका में, बुद्धि की शक्तियों से कि हवा का विश्वास बुद्धिमानी धारणा पर ले आए, वचन के विरोध में, जितना स्पष्ट ये हो सकता है बालक इसे समझ सकें, समझे? समझे? और ये ऐसा ही रहा है सारे समय से। आज की प्रातः यहाँ मिस्र में है बुद्धिमानी की एक शक्ति, रेमेसिस में कार्य कर रही है, उसे सामर्थ में ला रही है, उसे उठा रही है, जो उस स्वतंत्रता को नहीं जानता जो यूसुफ ने किया था, कलीसिया ने आरंभ में क्या किया था। और अब हम वही चीज देखते हैं, एक बौद्धिक शक्ति कलीसियाओं के बीच बुनी जा रही है, और ये पुरोहितवाद के अध्यक्षता की ओर उठ रहा है, जो इस बात की चिंता नहीं करता कि बाइबल ने क्या कहा है, उनकी अपनी ही व्यवस्था है। ये नहीं कि बाइबल ने क्या कहा, जो कलीसिया ने कहा, और प्रोटेस्टेंट इसी में बिन गए हैं, जब तक कि उनके छोटे झुंड इस प्रकार से, ठीक है, निश्चय ही, अच्छा मैं जानता हूँ ये कहता है, परंतु मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे दिन चले गए, भक्ति का भेष और सामर्थ का इनकार। बाइबल का हर पवित्र लेख सीधा इसकी ओर संकेत करता है। अब आप देखिए मैं क्यों इसे टेप करवाना चाहता हूँ और इसे लोगों को भेजूं। घड़ी आ पहुंची, सच्चाई मालूम होनी ही चाहिए, निर्गमन निकट है। समझे, वो बुद्धिमानी वाला भाग सिद्ध दिखाई पड़ता है, और ये सिद्ध है, ये बिल्कुल सही, सिवाय सिद्ध शैतान की प्रेरणा। और फिर सारे समय कि ये बुद्धिमान रेमेसिस बड़ा हो रहा था और सिंहासन पर आ रहा था, और स्मरण रखें, उसका पालन पोषण ऐसा हुआ जैसा मूसा का भाई। देखिए, मूसा का एक भाई, उनमें से एक को बुद्धिमानी की कुर्सी लेनी थी, जैसे यूसुफ अपने भाइयों के लिए, और उन्होंने उस छोटे यूसुफ के साथ क्या किया, उसे वचन में से बाहर कर दिया। वचन परमेश्वर है, और उन्होंने वचन को बाहर कर दिया और एक मत्सार को स्वीकार कर लिया, और अब मत्सार सामर्थ में बड़ा हो गया। ओह, परमेश्वर लोग ये देखने पाए। मैं कितनी और आवाजें प्रयोग कर सकता हूँ, मैं वचन से कितना और स्पष्ट कर सकता हूँ, पवित्र आत्मा की प्रेरणा की अधीनता में, कि हम यहाँ हैं। ओ, आप कहते हैं ठीक है, अब यदि ये पोप जॉन की ओर से आया, या पोप अमुक अमुक, या बिशप अमुक अमुक, क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर ने एक रेगिस्तान निवासी ना कि बराबर को लिया? कहते हैं कैसे ये सब गलत हो सकता है। परमेश्वर व्यक्तिगत से व्यवहार करता है, ना कि झुंडों के साथ, व्यक्तिगत के साथ। परमेश्वर अपना ले रहा है, अपना ले रहा है, केवल एक बात, उसे एक ही मनुष्य को लेना है जिसको वो चला सके। कुल मिलाकर वो एक मनुष्य को चाहता है। हर युग में से वो एक को लेने का यत्न करता है, यदि वो एक मनुष्य को ले सके। नूह के दिनों में उसने एक मनुष्य को लिया, एलिया के दिनों में एक मनुष्य, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में एक, केवल एक मनुष्य, वो जिसकी उसे आवश्यकता है। न्याय के दिनों में उसने एक मनुष्य को लेने का यत्न किया, समसून उसे महान सामर्थ्य दी, परंतु उसने एक स्त्री को बेच दी और अंधा हो गया था। वो न्यायी ऐसे नहीं थे, परमेश्वर न्यायी है, समझे? आप आज देखिए, वो एक मनुष्य को लेने का यत्न कर रहा है, जिसे वो अपने हाथ में ले सके, जो सत्य को बताएगा, जो निडर होगा, वो मुक्के नहीं तानेगा, वो हर धर्मी नहीं होगा। वो एक मनुष्य को अपने हाथों में पकड़ सकता है और अपने वचन को जीवित दर्शा सकता है और अपने आप को जीवित दिखाए। मैं विश्वास करता हूँ कि वो ऐसा व्यक्ति तैयार पा सकेगा। मैं समझता हूँ, मैं इसका विश्वास करता हूँ, मैं बस बाइबल पर पर्याप्त विश्वास कि वो ये पा सकेगा। ये ठीक बात है, जो सत्य बताएगा। कुछ समय पश्चात हम पाते हैं इन सब विद्यालयों में से होकर निकले। अब ध्यान दें, शत्रु कुछ सुझाव देता है, चतुर बुद्धि, क्योंकि शैतान बुद्धि पर कार्य करता है, और मस्तिष्क बैठकर और इस पर तर्क करता है और कहता है, अब जरा एक मिनट रुकिए, ये ऐसा नहीं है, ये एक सलाह है। उस दिन मैंने एक व्यक्ति से बात की और उसने कहा, देखो बिली, वो एक लोक सेवा कंपनी में कार्यरत है, एक अच्छा व्यक्ति। और उसने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा, आप आयरलैंड के हैं? मैंने कहा, हाँ श्रीमान, मुझे इस पर लज्जा आती है एक प्रकार से, परंतु मैं फिर भी हूँ। और उसने कहा, अच्छा, उसने कहा, क्या आप नहीं जानते कि आपको वास्तव में कैथोलिक होना चाहिए? मैंने कहा, मैं हूँ मूल कैथोलिक। ओ, आप जानते हैं पहली कलीसिया कैथोलिक कलीसिया थी। आप देखते हैं आज ये कहाँ पर है। ये पेंटिकोस्टल से आरंभ हुई, परंतु संगठन ने इसे कहाँ बैठा दिया जहाँ आज ये है। देखिए, पेंटिकोस्ट पर ठीक वापस आकर और संगठित हो गई, और वो चीज की पहली कैथोलिक कलीसिया, और वे लगभग आज उतनी दूर है जैसे वे 2000 वर्ष और 50 वर्ष उन्हें लगभग इस पर ले आए, समझे? उसने कहा, क्या आप ये विश्वास नहीं करते कि जब संघ विचारों का झुंड आप वहीं पर है, एक साथ बैठकर और किसी चीज पर तर्क करते हैं, और सारा झुंड सहमत हो सकता है, क्या आप नहीं सोचते कि वे थोड़े होंगे? क्योंकि मैं आपको प्रचार करते हुए सुनने आया हूँ, कहा, परंतु मैं आपसे असहमत हूँ। और मैंने कहा, केवल एक ही विधि है कि आप सिद्ध कर सकते हैं कि अपनी असहमति तर्कपूर्ण ये बाइबल के द्वारा सिद्ध होता है। उसने कहा बाइबल का इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा आपको ये नहीं हो सकता, परंतु मुझे इसका पूरी रीति से मतलब है। देखिए ये वचन है। उसने कहा क्या आप नहीं सोचते संघ के विचार एक संघ मिलकर बैठते अधिक सही हो सकते हैं और निश्चित होते हुए कि सही है, तब एक छोटा सा अनपढ़ व्यक्ति आप जैसा। और मैंने कहा अच्छा, कहा आपका किसी चीज के विरोध कहने का क्या मतलब है कि हमारी कलीसिया के विरोध में, जब ये वहाँ युग से होते हुए हैं, जब उनकी पहली सभा हुई जैसा कि आपने कहा, वहाँ एक रात्रि जब उसने ये सुना कलीसिया युग संघ सभा के निशियन रोम में जमा हुए और रोमन कैथोलिक कलीसिया बनाई। कहा क्या आप नहीं जानते कि वहाँ हजारों मनुष्य थे, आत्मा परमेश्वर के भेजे हुए पुरुष वहाँ सभा में बैठे, और क्या आप नहीं सोचते कि उनके विचार परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए अधिक अधीनता में थे बजाय आपके। अंततः परमेश्वर ने सिद्ध कर दिया इन 2000 वर्षों से होते हुए कि कलीसिया सही है। मैंने कहा उसने कभी सिद्ध नहीं किया इसे। मैंने कहा यदि वो कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है, चलिए देखते हैं कि ये पहली कलीसिया के समान करे जो उन्होंने तब किया। चलिए देखते हैं ये वही चीज उत्पन्न करे जो पहली बार हुई, जब यहाँ तक कि बाइबल कहती है यहाँ तक कि एक बिंदु या एक कण इसमें असफल नहीं होगा। और उसने कहा जो भी इसमें एक वचन निकालेगा या इसमें एक वचन मिलाएगा उसका भाग ले लिया जाएगा, चाहे वो संघ सभा या जो भी है जीवन की पुस्तक में से, वो समाप्त हो गया। कहा बिली तुम बस एक सनकी हो। और मैंने कहा तब मैं समझता हूँ एक बार इज़राइल के महान सम्मानित जब वे अलग हुए थे जैसे आज प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, इज़राइल इज़राइल ही बना रहना चाहता था, परंतु मैंने कहा हम पाते हैं कि उनके पास यहोशापात नाम का राजा हुआ, एक धर्मी मनुष्य जिसने जो परमेश्वर के नियमों को बनाए रखने का यत्न किया, परंतु उनके पास एक दूसरे वाला था आहाब नाम का, जिसने एक स्त्री बिहाली, राजनीति, दूसरे राष्ट्र के साथ मित्रता की और उनकी एक लड़की से विवाह कर लिया इजाबेल, और उसे परमेश्वर के लोगों के मध्य में ले आया। वही चीज जो हम कर रहे हैं और अंदर ला रहे हैं, और वो शासक बन गई और आहाब से ये कहलवाती और आहाब से वो कहलवाती, वही चीजें अब कर रहे हैं। और मैंने कहा शक्ति प्रदर्शन आ गया। वे दोनों कलीसियाओं को एक साथ मिलाना चाहते थे जैसे कि वे अब करने का यत्न कर रहे हैं, और आहाब को और यहाँ तक कि यहोशापात संगठन का व्यक्ति ने कहा कि ये अच्छा रहेगा तेरे लोग मेरे लोग हैं, हम सब मसीही हैं, हम सब विश्वासी हैं, आइए एक साथ मिलें। परंतु जब वो ये दिखाने को वहाँ गया उसने कहा क्या आप नहीं सोचते हमें इस विषय में प्रार्थना करनी चाहिए, हमें प्रभु से परामर्श करना चाहिए। और उसने कहा हाँ, आहाब ने कहा, इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या, आइए प्रभु के भविष्यवक्ता को ढूंढें। परंतु आप देखिए आहाब के पास एक पद्धति थी जिसके लिए उसने सोचा ये प्रभु से थी। उसने कहा मेरे पास उनमें 400 हैं शिक्षित और प्रशिक्षित किए हुए, और उन्होंने इब्रानी भविष्यवक्ता होने का दावा किया जैसा कि आज सेवक गणों का झुंड करता है, और वे उन्हें बाहर निकाल कर लाए और उनसे युद्ध छिड़ने के विषय में प्रश्न किया। उनमें से हर एक एकत्र हुआ और मिल गए जैसे कि आज संघ सभा आज कर रही है, और वे प्रश्न के साथ आए जाओ चढ़ जाओ प्रभु तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो देश हमारा है, और सीरियाओं को वहाँ से धकेल दो या फिलिस्तीनियों को उन्हें बाहर निकाल दो क्योंकि देश हमारा है। ये बात तर्कपूर्ण लगती है समझे, परंतु फिर भी यहोशापात के हृदय के अंदर ये ठीक नहीं लगा। उसने कहा मैं जानता हूँ आपके पास अच्छे प्रशिक्षित धार्मिक संघ के 400 सेवक गण हैं, और वे सारे एकमत हैं, यहाँ तक उन्होंने एक जोड़ा लोहे का सींग बनाकर और कहा यहोवा यूं कहता है, परंतु क्या हम एक और नहीं ढूंढ सकते। उसने कहा राजा ऐसा ना कहे, राजनीतिज्ञ ने कहा कि राजा ऐसा ना कहे, क्योंकि ये लोग प्रशिक्षित मनुष्य हैं, मैंने स्वयं ही उन्हें सिखाया किया है, ये समझे, यही है, मैंने इन मनुष्यों को सिखाया है, परंतु वहाँ एक और है परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ समझे। कहा वो मिकाया है, इमिला का पुत्र, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ। वो कुछ नहीं, केवल एक स्वधर्म त्यागी उनके बीच में। वो उन पर चिल्लाता रहता है, वो सदा मुझसे कहता रहता है कि मैं गलत हूँ। मेरे राज्य को देख, हाँ इसे देख, इसमें कितनी गड़बड़ थी। आज अपने नामधारी को देखें, भक्ति का भेष भरते हैं, उसकी सामर्थ्य का इनकार करते हैं, समझे? ओ आप लाखों में अधिक होंगे और हजारों अधिक और अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त लोग, परंतु आप आत्मा में कहाँ हैं? आपकी सामर्थ्य कहाँ पर है? समसून में थी जब वो वहाँ खड़ा हुआ और उस दिन बोला, अपने लंबे चौड़े आकार के साथ वो वहाँ पर और हर रोम रोम, परंतु उसमें जीवन नहीं, आत्मा ने उसे छोड़ दिया। वो असहाय था, एक छोटा बालक उसकी आसपास अगुवाई कर रहा है, अंधी आंखें किसी स्त्री के कारण। ठीक वैसे ही जैसे आज कलीसिया है, राजनीति के द्वारा घुमाई जा रही है, बिशप प्राचीन और सब प्रकार की चीजें, लोग अपनी टोपी में से तिनके खींच रहे हैं कुछ मिल जाए और सारी बातें। कहाँ हैं हम? इसलिए जब हम इस स्थान पर आते हैं, उन्होंने भेजकर इमला को बुलवाया, या वो इमला नहीं परंतु मिकाया, इमला का पुत्र, भेजकर ले आओ। और उसने भविष्यवाणी करके उनको बताया कि आप मारा जाएगा यदि वो वहाँ गया। और आर्क बिशप ने उसके मुख पर थप्पड़ मारा। वो इस विषय में ईमानदार था। उसने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझे छोड़कर कहाँ गया? कहा, तू देखेगा। ओ कहा, इसे जेल में डाल दो, इसे अंदर की कोठरी में डाल दो, इसे दुख की रोटी दो, दुख का पानी दो, जब मैं शांति से वापस आऊंगा, कहा, तब मैं इसे देखूंगा। और वो इमला जानता था कि वो ठीक परमेश्वर के साथ है। क्यों? उसका दर्शन वचन से मिलता था, वो एक भविष्यद्वक्ता था, और उसकी आत्मा और उसका दर्शन ठीक भविष्यद्वक्ता एलिया के साथ था। उसने कहा, यदि तू वापस आया तो परमेश्वर मुझसे नहीं बोला। अब मैंने इस व्यक्ति से कहा, कौन ठीक है? धार्मिक संघ जहां 400 चुने हुए एक साथ बैठे हैं, मनुष्यों के द्वारा चुने हुए, या एक छोटा स्वधर्म त्यागी परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ? अच्छा, उसने कहा, भाई आप कैसे अंतर जान पाएंगे? मैंने कहा, वापस मूल रूप रेखा पर, कैसे हम भवन को बनाना जानते हैं जब तक वहाँ नीला नक्शा ना हो? यदि वे एक मिनट रुकते और ढूंढते कि भविष्यद्वक्ता एलिया ने अहाब को श्राप दिया और कहा कुत्ते उसका लहू चाटेंगे, और उन्होंने किया, वे कैसे आशीषित कर सकता था जिसे परमेश्वर ने श्रापित किया? आप कैसे किसी चीज को आशीषित कर सकते हैं जिसे परमेश्वर ने श्रापित किया? उस चीज से बाहर आ जाएं, उससे अलग हो जाएं, मसीह में आ जाएं। आमीन। अब ध्यान दें, परंतु शत्रु सुझाव देगा, शत्रु चीज का सुझाव देगा, इसे तैयार करो, और चतुर मस्तिष्क कहता है ये ठीक है। यही जहां ये मूल्यवान भाई था, एक मनुष्य, उसने कहा, ऐसा लगा, इधर देखिए, आप जानते हैं कि यदि हम सब एक साथ जमा हो जाएं, एक कलीसिया के समान, क्या आप नहीं सोचते कि हम अधिक अच्छे हो जाएंगे, बजाय इसके कि जिस प्रकार हम बिखरे हुए हैं अब, क्या ये तर्कपूर्ण नहीं लगता? यदि सारे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक एक साथ एकत्र हो सकें और आपसी सहमति पर आ जाएं, परंतु दो एक साथ कैसे चल सकते हैं जब तक सहमत ना हो जाएं? कैसे आप हो सकते हैं जब एक झुंड यहाँ यहाँ ये चंगाई में विश्वास नहीं करता, दूसरा वाला कहता है वे विश्वास करते हैं, दूसरे वाले इसे किसी बीते समय में रखते हैं, कुछ बाइबल तक में विश्वास नहीं करते और इसे एक साथ रखते हैं? आपके पास क्या है? परमेश्वर गड़बड़ी का रचने वाला नहीं। इसके पहले परमेश्वर अपनी कलीसिया को व्यवस्थित कर सके, उन्होंने 10 दिन और रात प्रतीक्षा करी, जब तक कि वे एक स्थान में एकमत न हो गए। और यहाँ पवित्र आत्मा अगुवाई के लिए आता है, न कि किसी कलीसियाओं की संगठित सभा के लिए, समझे? मैं आशा करता हूँ आप ये समझ गए। ध्यान दें, ये अविश्वासी है, परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य नहीं, जो ध्यान नहीं देता वचन क्या कहता है, परंतु अपनी ही तर्कों पर ध्यान नहीं देता। यही जो हवा ने किया, पहली बार में उसने अपने तर्क पर भरोसा किया। शैतान ने कहा, अब यहाँ देखिए, क्या ये तर्कपूर्ण नहीं है? मैं जानता हूँ कि ये वचन कहता है, परंतु एक मिनट प्रतीक्षा करें, क्या ये तर्कपूर्ण नहीं है कि तुम पहले से और अच्छे हो जाओगे यदि तुम सही और गलत समझने लग गए? क्यों? हाँ, तब उसने इसे लिया, समझे? निश्चय ही तर्क के साथ यही है। अब अविश्वास सदा तर्कों पर जाएगा, परंतु विश्वास इसे नहीं छुएगा। क्या ये हमारे पूर्वज के लिए तर्कपूर्ण नहीं रहा होगा, जिससे जो हमारे विश्वास का पिता है अब्राहम, कि हम मसीह में होकर उसके बालक हैं? क्या ये तर्कपूर्ण नहीं रहा होगा कि एक स्त्री 65 वर्ष की, जिसके साथ वो तब से रहा जब वो एक लड़की थी, बालक ना पा सकी? और जब वो 100 वर्ष की हो गई या 90 की और वो 100 का और अब भी कोई बालक नहीं, तर्कपूर्ण ना होगा? कुछ महान डॉक्टर और वैज्ञानिक ने सारा की जांच की, कहा क्यों उसका गर्भ तो सूख गया, दूध की नाड़ियां सूख गई हैं 40 वर्षों पहले, उसका हृदय इस आयु में वो प्रसव पीड़ा सहन नहीं कर सकती, क्यों? केवल यही कारण है, परंतु अब्राहम ने इसे मना कर दिया। वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अविश्वास के द्वारा लड़खड़ाया नहीं, तर्कों के विरुद्ध वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर लड़खड़ाया नहीं, कोई मतलब नहीं ये क्या था, क्योंकि उसने परमेश्वर को हर चीज करने के योग्य जाना कि उसने कहा वो करेगा। अब आज प्रातः अब्राहम की संतान कहाँ है? आप सेवक गणों जो डरते हैं, आप अपनी रोटी पानी के लिए डरते हैं, सड़क पर यदि आप बाबुल को छोड़ते हैं, आपका विश्वास कहाँ है? दाऊद ने कहा, एक समय मैं युवा था, अब मैं बूढ़ा हूँ, मैंने कभी धर्मी को छोड़ा हुआ नहीं देखा या उसका वंश रोटी मांगे। डरिए नहीं, मसीह के प्रति सच्चे बने रहें। परंतु अविश्वास तर्क को पकड़ेगा, यही जो उसने किया। अब आप समझ गए, अविश्वास कारण पर आधारित है। आज के दिन की बातें, विश्वास ये नहीं करेगा। विश्वास वचन को देखता है, परंतु विश्वास अपने आप को न हिलने वाली चट्टान के ऊपर रखता है, परमेश्वर के अनंत वचन पर। आमीन। विश्वास कारण को नहीं देखता। मैं चिंता नहीं करता आप कितना भी मुझे दिखा सकते हैं, ये और अच्छा होगा। यदि वचन कहता है नहीं, विश्वास उसी पर टिकता है। ये विश्वास के मंदिर का विश्राम स्थल है। मैं आप लूथरन से पूछना चाहता हूँ इस प्रातः, आप बैप्टिस्ट हो और आप कैथोलिक और आप जो भी हैं, सारे संसार में आप नामधारी लोगों, कैसे आप अपना विश्वास अपने नामधारी पर रख सकते हैं जबकि ये वचन के विरोध में है? आपके पास किस प्रकार का विश्वास है? आपके पास तर्क की सामर्थ्य है और विश्वास नहीं, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, कलीसिया की संगठन सभा से। क्या कभी आप कहा आप ये बूढ़ी महिला एलमेरिक के जन्मदिन पर पा सकते हैं? परंतु आप ये परमेश्वर के वचन में कभी नहीं पाएंगे। विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। आमीन। मुझे एक भी व्यक्ति बताएं जो इसके विरोध में कुछ भी बोल सकता है और कहे कि ये परमेश्वर का वचन है। जब स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु वो वचन नहीं टलेगा। विश्वास वचन को ढूंढता है, विश्राम का मंदिर, ये ठीक उसके ऊपर जो अनंत चट्टान है यीशु मसीह, वचन उस पर आता है और वहीं टिककर और विश्राम करता है। आंधियां चलने दो, तूफानों को हिलाने दो, वो सुरक्षित है सदा के लिए। वो ठीक वहाँ वचन पर विश्राम करती है, यही जहाँ विश्वास, वास्तविक मसीही विश्वास विश्राम करता है। वचन विश्राम स्थल है, क्योंकि ये जानता है कि परमेश्वर कभी स्वयं को अपने शत्रुओं के ऊपर अति उत्तम प्रमाणित करेगा। कोई मतलब नहीं कि ये कितना खराब दिखाई पड़ता है और कैसे शत्रु अंदर आ गया और कैसे ऐसे दिखाई पड़ता है कि आप हार गए, विश्वास अब भी जानता है। अब आप बीमार लोगों, मैं कैसे इसे घर में डाल दूं? जब आप इस विश्वास को पकड़ते हैं कि आप चंगे होने जा रहे हैं, हर परिस्थिति, हर चीज, सारे चिन्ह, सारे लक्षण संकेत कर रहे हैं कि आप मर रहे हैं, आप कभी नहीं हिलेंगे। ये विश्राम स्थल है, परमेश्वर के वचन के मंदिर में। जब विश्वास, विशुद्ध विश्वास अपने आप को वहाँ बैठा लेता है, अब बनावटी विश्वास नहीं, विश्वास आशा नहीं परंतु विश्वास। आशा यहाँ नहीं है, आशा कर रहे ये था, विश्वास अंदर आ चुका, ढूंढ रहा है और कह रहा है ये हो चुका है, समझे? यही विश्वास है, यही जहाँ विश्वास अपना विश्राम लेता है, क्योंकि ये जानता है कि परमेश्वर कभी नहीं, कभी भी शत्रु को उसके ऊपर सवार नहीं होने देगा, उसने कभी नहीं, विश्वास ये जानता है। इसलिए चाहे जो हो, चीज कैसी दिखाई पड़ती है, नूह जानता था कि वो नाव तैरेगी, समझे? निश्चय ही ये हुआ। डेनियल को मालूम था कि परमेश्वर सिंहों का मुंह बंद कर सकता है। इब्री बालकों को मालूम था कि परमेश्वर आग को रोक सकता था। यीशु को मालूम था कि परमेश्वर उसे फिर से जिला उठाएगा, क्योंकि वचन ने कहा, मैं उसका प्राण अधोलोक में ना छोड़ूंगा, ना ही मैं अपने पवित्र को सड़ने दूंगा। वो जानता था सड़ाहट 72 घंटों में होती है। उसने कहा, 3 दिनों में मैं फिर से जी उठूंगा। समझे, इसने अपना अनंत विश्राम स्थल परमेश्वर के वचन के मंदिर में ले लिया और वहाँ वो खड़ा हुआ। कारण इसे मान्यता देने का भरसक यत्न करेगा, भाई इस व्यवस्था को इससे अच्छा होना ही है, यही है वो। ये अच्छा दिखाई पड़ता है क्योंकि आप बुद्धिमानी के विचार से देख रहे हैं। आप तर्कों को सिद्ध कर सकते हैं, परंतु आप विश्वास को सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप इसे सिद्ध कर सके तो फिर ये विश्वास नहीं रहा। परंतु विश्वास केवल वचन को जानता है और प्रतिज्ञा को, और ये उस चीज को देखता है जो आप नहीं देखते। विश्वास आशा की हुई चीजों का निश्चय, अनदेखी चीजों का प्रमाण है। आप तर्क नहीं कर सकते, मैं सिद्ध नहीं कर सकता कि ये कैसे किया जाएगा, मैं नहीं जानता कि ये कैसे होने जा रहा है, मैं नहीं जानता, परंतु मैं इसका विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये ऐसे ही है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, ये तय हो गया। यही कारण है कि मैं जानता हूँ कि ये सही है, मैं जानता हूँ कि वचन सही है, मैं जानता हूँ कि संदेश सही है, क्योंकि ये वचन में है और मैं जीवित परमेश्वर को देखता हूँ। परमेश्वर इसमें बीच में कार्यरत है कि सिद्ध करे हम एक निर्गमन पर हैं। निश्चय ही सत्य है, यहाँ तक कि मृत्यु भी विश्वास को नहीं हिला सकती। लोग मृत्यु में खड़े रहे, ठीक मृत्यु के सामने, और पुनरुत्थान की जीत में चिल्लाए, पौलुस, ओ मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, कब्र तेरी जय कहाँ है। समझे, क्योंकि मसीह जी उठा, और वे जो मसीह में हैं उसके साथ उसके आगमन में आ जाएंगे। समझे, इसे बदल नहीं सकते। जी हाँ, विश्वास परमेश्वर के वचन को अनंत विश्राम का मंदिर बनाता है। यह परमेश्वर के वचन में रखा है। ध्यान दें फिर से, अब हमें थोड़ी देर और हो गई है, लगभग 25 मिनटों की, यदि आप बुरा ना माने। मैं इसे टेप को चलाए रखना चाहता हूँ, बस एक मिनट। ध्यान दें, वो राजा, वो नया राजा जो आया, जो यूसुफ को नहीं जानता था, उसकी पहली योजना क्या थी कि इज़राइल की सामर्थ का नाश करे, वो उनके बालकों से, ये ठीक बात है, उसने उनके बालकों को नाश करने का यत्न किया। ध्यान से सुने, वही शैतान राजाधिकार के दूसरे रूप में परमेश्वर के इकलौते पुत्र को नाश करने का यत्न किया। समझे, पहले बालकों को खत्म करो, इसके पहले कि वो शुरू हो। शैतान वास्तव में चालाक चतुर चिड़िया, वो जानता है कि चीजों पर कैसे प्रहार करे, इसके पहले कि वो आरंभ हो, वो ये जानता है। समझे, और केवल वही चीज जो आप कभी कर सकते हैं कि उसे पछाड़े, वास्तव में मसीह पर और अपने आप को नम्र करें और उसे आपकी अगुवाई करने दें। समझे, आप ये किसी और प्रकार से कभी नहीं कर पाएंगे, आपकी बुद्धि की सामर्थ्य से कभी ये नहीं कर पाएगी। आपको विश्वास करना ही है, बस उस पर निर्भर करें। वो चरवाहा है, ये भेड़ का काम नहीं है कि भेड़ियों को दूर रखे, ये चरवाहे का काम है, परंतु भेड़ को चरवाहे के साथ बने रहना चाहिए ताकि सुरक्षित रहे। ये मेरी सुरक्षा का स्थान है मसीह में, और मसीह वचन है, यही सुरक्षा का स्थान है। ध्यान दें, शैतान रमसेस के रूप में एक राजा, पहली चीज जो उसने की कि बालकों से छुटकारा पाए स्वाभाविक मृत्यु से, और जैसे ही परमेश्वर का पुत्र जन्मा था वो मिस्र से चला, क्योंकि परमेश्वर ने मिस्र को नष्ट कर दिया, इसे श्रापित किया, ये कभी वापस नहीं आया तब से। तब वो रोम में था, शैतान ने अपना सिंहासन हटाया, अपना सिंहासन रोम को, और पहली चीज जो रोम ने की कि सबको नष्ट कर दे, कि ले ले, निश्चित हो जाए। शैतान रोम की व्यवस्था में से परमेश्वर के पुत्र को नष्ट करने का यत्न किया, आरंभ से ही वही शैतान, और आज उसने वही चीज की है। अब आत्मा के चिन्ह की अधीनता में धार्मिक कहलाने वाली मसीहत और हमारी लड़कियों को ले रहे हैं, और उनका विवाह कैथोलिक लड़कों के साथ, और उनसे अपने कैथोलिक बालक जन्माते हैं कि दूसरी ओर की सामर्थ को तोड़ दें। यहाँ आपके प्रेत हैं, वहाँ आपका शैतान 7 पहाड़ों पर बैठा है, 3 ताजों को पहने, एक चालाक के समान और चतुर तेज सर्प के समान बुद्धिमान, सर्प का वंश, उसके बालक वही बुद्धिमानी पद्धतियों का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, तब वे बालकों को मारते हैं, दूसरे 2 समयों में वे बालकों को किससे मारते हैं, 2 बार, अब स्मरण रहे, उन 2 पर ध्यान दें, और तब 3, उसने बालकों को पहले 2 बार में मारा स्वाभाविक मृत्यु से, और इस अंतिम बार में वो बालकों को ले रहा है और उन्हें आत्मिक मृत्यु से मार रहा है, शादियां, अंतर जातीय विवाह। क्या डेनियल ने यही बात नहीं कही लोहे और मिट्टी के इस राज्य में कि वे उन बीजों को मिला देंगे दूसरे लोगों की सामर्थ को तोड़ने के लिए, और यही जो वे कर रहे हैं। जब तक उस चीज को ना ले लें, उन्होंने राष्ट्रपति को अंदर कर दिया। अब अगली चीज जो आपको करनी है कि कार्डिनल को अंदर लाएं, सारे मंत्रिमंडल के अंदर, और तब आप क्या करने जा रहे हैं। अगली चीज जो वे करते हैं, वे अपने पैसों को लेते हैं और संयुक्त राज्य के कर्जे को चुकता करते हैं और इसे कलिसिया से उधार लेते हैं, और फिर आप बिक गए। जी हाँ, अब हम आज जी रहे हैं अपने विदेशी कर्जे का वहाँ भुगतान कर रहे हैं, उस कर के पैसे से जिसका भुगतान 40 वर्षों तक नहीं हो पाएगा जो बीत गए। हमारे पास और पैसा नहीं है, परंतु कलिसिया के पास है। ये क्या बाइबल नहीं कहती वो सोने से सजी हुई है? और ओह प्रभु, परंतु आप ये इसी प्रकार से करता है। देखिए, आपकी बेटियों से विवाह, बेटियां आपके पुत्रों से, अपने बालकों को कैथोलिक में बड़ा करते हैं, बिल्कुल ठीक, उन्हें आत्मिक मृत्यु से मारते हैं। क्या बाइबल नहीं कहती कि वो उसे संसारिकता के पलंग पर डाल देगा और उसके बालकों को आत्मिक मृत्यु से मार डालेगा? प्रकाशित वाक्य 17, ये सदा वचन है। मैं चिंता नहीं करता आप कहाँ जाते हैं, ये अब भी वचन है। इसे चित्र में सही बैठना है। यदि ये नहीं, ये वचन नहीं है, ये वचन नहीं है, आप सारी बाइबल में से होकर नहीं निकल सकते, तो फिर ये गलत है। देखिए, इस समय के चलते परमेश्वर अपने दास को अपने कार्य के लिए प्रशिक्षण दे रहा है, उनकी दृष्टि से दूर उसे शिक्षित कर रहा है, उनकी योजनाओं से बाहर, उनके कार्यक्रमों से। क्या आप ये समझ रहे हैं? उनकी संगठन की व्यवस्था से बाहर परमेश्वर मनुष्य को अपने उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। वो बस इसे चलने दे रहा है, उसे विवाह करने दो, पत्नी बच्चे होने दे, बालक गर्शम, वो अच्छा सुंदर जीवन जी रहा है, वहाँ आशीषें मिल रही हैं, परंतु सारे समय वो उसे तैयार कर रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है। परमेश्वर और उसके शत्रु ने किया स्वाभाविक में, तब जिस प्रकार परमेश्वर और उसका शत्रु अब आत्मिक में कर रहे हैं, वे उन्हें स्वाभाविक मृत्यु से मार रहे हैं, अब आत्मिक मृत्यु के साथ, समझे। परमेश्वर एक स्वाभाविक पुरुष को तैयार कर रहा है, उसका नबी की मिस्र में जाए, और शैतान रमसेस को तैयार कर रहा है, उसका स्वाभाविक पुरुष। देखिए, एक स्वाभाविक पुरुष तैयार है क्या कि मार डाले या सारे मिस्रियों और इब्रानियों को एक साथ, उन्हें अब भी अपनी सेवा के लिए तैयार। इसी कारण ये कठिन है कि बुद्धि के तर्क के विरुद्ध शिक्षा व्यवस्था जो अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, समझे, ये ठीक बात है, उसकी बुद्धि सदा शिक्षा के लिए जाएगी। चतुर बुद्धि और तर्क के विचार इसे देख भी नहीं पाते। क्या आपने सिसिल डी मिल के 10 कमांडमेंट देखी है? मैं समझता हूँ आप में से बहुतों ने देखी है। मैं चलचित्रों को देखने जाने में विश्वास नहीं करता, ये सारी चीज, परंतु मैंने कलीसिया को अनुमति दी कि कोई, यदि उनके पास कुछ नहीं सिवाय इसके, जिन्होंने इसे देखना चाहा, ये ठीक रहेगा यदि वे इसे देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि, पहले मेरे कुछ बालक गए, वे आए मुझे बता रहे थे, मैं तो बहुत वर्षों से नहीं गया, अंततः मैं वहाँ गया जब ये इस गाड़ियों वालों में था, मैंने वहाँ ये देखा, मैंने देखा ये क्या था, तब मैंने कलीसिया से कहा यदि आप इसे देखना जाना चाहते हैं, ये ठीक है, ये वहाँ था, ये बहुत ही अच्छी सुंदर थी। कैसे वो शैतान की चालाकी, वो वहाँ पर कितना धूर्त था, कैसे वो उन बालकों को मार डालने के लिए भीतर गया, और कैसे उस बुद्धिमान विचारों ने इसे लिया और इसका विश्वास किया, क्योंकि वे इसे देख सकते थे, ये तर्कपूर्ण था। ओ कैसे परमेश्वर सारे समय इस भविष्यद्वक्ता को प्रशिक्षित कर रहा था, और कैसे मिस्र इस रमसेस को राजनीति में प्रशिक्षित कर रहा था कि जीत ले, और तब एक दिन एक महान मुकाबला आ गया उस बुद्धि और आत्मिक सामर्थ का, और रमसेस अपने सारे देवताओं के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था और नील के देवताओं को पानी उंडेल कर धन्य कर रहा था। परमेश्वर ने उसे मारा और उससे लहू निकल कर आया, उसके पास था। ओ मैंने सोचा ये प्रहार कर रहा था, देखिए क्या घटित हुआ। ओ अब ध्यान दें, बुद्धिमान सदा तर्क पे जाता है और ये आत्मिक क्षेत्र को नहीं देख सकता, क्योंकि ये बुद्धिमान है। ओ ना ही किसी और समय में, वे इसे अब नहीं देख सकते, वे इसे एलिया के दिनों में नहीं देख सके। कैसे एक बूढ़ा फुलफुले चेहरे वाला भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर इस प्रकार की बात कहने के लिए मुझे क्षमा करे, परंतु मैं चूका, और परमेश्वर जानता है कि मैं इसे हास्य पद बनाने की कोशिश कर रहा था जैसा मैं कर सकता था, ताकि आप उसे देख सकें, परमेश्वर के आत्मा को। जैसा पौलुस ने कहा, मैं तुम्हारे पास लुभावने वचनों और बुद्धि के साथ कभी नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे विचार बुद्धिमानी की ओर न झुक जाएं, परंतु मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के संग आया ताकि तुम्हारी आशा और विश्वास टिकेगा, न कि मनुष्य की बुद्धिमानी पर, परंतु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य पर। इसी कारण क्योंकि मैं इसे हास्यपद बना रहा था उस महान धर्मी भविष्यवक्ता के कहलाने के द्वारा फुलफुले चेहरे के साथ, क्योंकि वो अजीब सी दिखने वाली चीज हो सकता था कि अच्छे वस्त्रों वाले याजक के बराबर में खड़ा हो और स्वयं को परमेश्वर का जन कहलाए। उसे देखिए, आप याजक की पवित्रता को देख सकें, बुद्धिमानी के विचार में आप उसके सिर पर पगड़ी देख सकें और चारों ओर और उसकी छाती पर एपोद पड़ा हुआ, यहाँ आप अभिषेक के तेल को देख सकें, स्वाभाविक उसकी दाढ़ी पर लबादे के नीचे छोर पर नीचे की ओर बह रहा है, आप बलिदान की जलती हुई आग को देख सकें और सारे अनुष्ठान क्रम में। अब यही जो स्वाभाविक विचार इसमें जाएगा, वही जो वे आज इसे करने का यत्न कर रहे हैं। आँख प्राण का द्वार, परंतु आप देखिए आत्मिक आँख पीछे उस आंख में। उन्होंने इस बूढ़े फुलफुले से दिखने वाले व्यक्ति को वहां खड़े देखा, उसके सीने पर बाल और एक बड़ा भेड़ की खाल का टुकड़ा अपने चारों ओर लपेटे, एक कमर में बंधा हुआ जो कि संभवतः नंगे पैरों के साथ, हाथों की छोटी लटकती हुई खाल इस प्रकार से, और एक सफेद दाढ़ी उसके चेहरे से लटकती हुई और एक टेढ़ी सी छड़ी उसके हाथ में वहाँ खड़ा हुआ है। परंतु आत्मिक आँख वहाँ परमेश्वर की सामर्थ को कार्य करते देख सकती थी, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक वचन के साथ है, ना कि जो बुद्धिमान देखता है जो आत्मिक आँख देखती है। और आज स्वाभाविक आँख एक मोहक कलीसिया को देखती है, नगर के मेयर के साथ संगति या जो इस नामधारी के संगठन, और वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को देखने में असफल रहे जब ये मृतकों को जिलाता और बीमार को चंगा करता है, और कैसे समझे, वे देखते हैं और वे हॉलीवुड को देखते हैं और वे सड़क पर लोगों को देखते हैं। आज स्त्री सोचती है, अच्छा ये स्त्री सूजी कलीसिया की है, उसने अपने बाल कटवा रखे हैं, वो श्रृंगार करती है, नगर में हर कोई उसे पसंद करता है, मुझे स्वर्ग के विषय में आश्चर्य है। समझे, जब वो वचन के विरोध में है, परमेश्वर इसका समर्थन नहीं कर सकता, वो अपने ही विरोध में समर्थन कर रहा होगा, वो अपने ही वचन का इनकार कर रहा होगा। और ये मालूम हो जाए, परमेश्वर इसे कभी नहीं करेगा, यद्यपि आकाश और पृथ्वी टल जाएं, एक बाल कटी स्त्रियां परमेश्वर की दृष्टि में श्रापित हैं, या एक स्त्री जो पुरुष के कपड़े पहनती है। समझे, आत्मिक आंख इसे पकड़ती है, वे यहाँ के बाद जीवित रहते हैं, स्वाभाविक बुद्धि स्वाभाविक चीजों को आज के तर्क पर जीती है। अब ध्यान दें, परमेश्वर ये कर रहा है और फिर भी लोगों को ये नहीं मालूम, संसारिक बुद्धि तर्कों के साथ चल रही है। अब परमेश्वर एक आत्मिक निर्गमन के लिए बुला रहा है, कहाँ उसने अपने लोगों को स्वाभाविक निर्गमन के लिए बुलाया, आज वो आत्मिक निर्गमन के लिए बुला रहा है, उसका क्या, उसके चुने हुए, केवल उसके चुने हुओं के लिए। अब मिस्र इसराइल को सही होते नहीं देख सका, यद्यपि मेमने के लहू के होते हुए नहीं देख सका दरवाजे पर और चौखट पर, और वे बातें जो घटित हो रही थीं, और वहाँ परमेश्वर इस नबी में कार्य कर रहा है और एक पुरुष के वचन को ले रहा है, उसे वहाँ खड़ा होने दिया, और एक छड़ी जिस पर वो झुका हुआ और पूर्व की ओर बढ़ाता है और कहा, मक्खियाँ आ जाए, और मिस्रियों के ऊपर फूका, वहाँ वापस चला गया, और हर किसी ने कहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। परंतु थोड़ी ही देर के बाद एक पुरानी हरी मक्खी मंडराने लगी, थोड़ी देर के बाद वे संभवतः 2 पाउंड प्रति वर्ग गज के हिसाब से, उस मनुष्य ने बोला, सृष्टि अस्तित्व में आ गई। यहाँ एक बुद्धिमान रमसेस वहाँ पर खड़ा हुआ था, वो विरोध में था, एक बहुत ही धार्मिक पुरुष और जीवते परमेश्वर के आत्मा के विरोध में, और स्वाभाविक बुद्धि केवल रामसेस को देख सकती थी, परंतु आत्मिक बुद्धि ने प्रतिज्ञा को देखा और इसे घटित होते हुए देखा। ठीक है, यदि यहोशू और कालिब उन अमलेखियों और हिब्बियों और यबूसी ऐसे की जैसे वे वहाँ नहीं थे के लिए कहा, तब भी दुगने या 3 या 4 गुना वे उनके आकार से थे। और स्वाभाविक बुद्धि कादेश बर्निया पर जब भेद लेने वाले वहाँ आ गए, बोले, हम ये नहीं कर सकते, हम वे बहुत अधिक हैं। अच्छा, हम जैसे जैसे हम टिड्डियों के समान हैं उनके सामने। परंतु कालेब और यहोशू ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखा, कहा हम इसे करने के अधिक योग्य हैं। क्यों? वे देख रहे थे, परमेश्वर ने कहा ये देश मैं तुम्हें देता हूँ। समझे, संसारिक बुद्धि इसे नहीं समझती, आत्मिक बुद्धि इसे समझती है। और क्यों, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मिस्री लोग ये चीजें क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि वे चुने हुए नहीं थे। परमेश्वर ने अब्राहम को ये होने से पहले बता दिया था। समझे, इसे तुम सोती हुई कलीसिया, परमेश्वर ने अब्राहम को इसे घटित होने से पहले बता दिया। तेरा वंश मिस्र में परदेशी होकर रहेगा 400 वर्षों के लिए, और मैं उन्हें बाहर लेकर आऊंगा। इसी कारण उन्होंने इसे देखा, क्योंकि वे इसे देखने के लिए चुने हुए थे। उनका चुनाव, इसराइल परमेश्वर का चिन्ह देखने के लिए चुना हुआ था, और वे मिस्र से बाहर आए जहां अविश्वासी नष्ट हो गए। और आज परमेश्वर अपने चुने हुओं को बुला रहा है, अब्राहम के आत्मिक वंश, विश्वास के द्वारा जो उसका परमेश्वर के वचन में था। क्या आज आप आत्मिक वंश इसे नहीं देखते? बुद्धिमान कलीसिया इसे नहीं देखती, ये वचन देखती है। और ये उन बड़े नामधारियों में से बुलाए जा रहे हैं कि यीशु मसीह की उपस्थिति में आए। आमीन। क्या ये स्पष्ट था? क्या आपने ये समझ लिया? ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। केवल चुने हुए डॉक्टर DLPH वे से कभी नहीं देखते, वे चुने हुए नहीं थे। और स्मरण रहे, ये चुनाव अब आ रहा है, किसी और देश में जाने के लिए नहीं, ये महिमा में जा रहा है जहां उनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। स्वाभाविक की अधीनता में नहीं, छोटा पशु मेमना जो इसराइल को बाहर लाया, और वे वहां से पिछड़ सकते थे और वापस जाते, परंतु ये नहीं हो सकता। ये परमेश्वर के मेमने की अधीनता में, जो पृथ्वी की सृष्टि से पहले घात किया गया और उनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में पृथ्वी के रचने से पहले लिखे गए, और वे वहां पर हैं चुने हुए। और जब ज्योति उन पर चमकी, इस प्रकार से उनके लिए नामधारियों की दीवार गिर पड़ी, और वहां वे आ गए। उनके बीच में से निकल आओ, कहा पवित्र आत्मा इन अंत के दिनों में उनकी अशुद्ध वस्तुओं को न छुओ। मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां होगे। ध्यान दें, इसराइल देख रहा था, वे जानते थे कि परमेश्वर अपने नबियों के साथ व्यवहार करता है। वे वचन उनके पास आया और वे इसे देखने को आए, और उन्होंने ये देखा। और अब बुद्धिमानी का चिन्ह, अब हम इसे देखते हैं कि वे अपने संगठनों पर विश्वास कर रहे हैं, वे अब भी अपने मतसारों में हैं। फिर भी वे जैसा कि बालाम था जो पहाड़ की चोटी पर आया, जहां इसराइल था वहां इसराइल था, न कि एक राष्ट्र, ये बस एक लोग थे जो भटक रहे थे और दोषी थे। और मोआब उसका भाई, बुद्धिमान मनुष्य का संगठन, पहाड़ की चोटी पर बिशप के साथ, यानी कि भविष्यद्वक्ता जो उनका था, और एक वेदी तैयार की और वही बलिदान चढ़ाया, परंतु वो अग्निस्तंभ को देखने में असफल रहा, और इसराइल के मध्य में मारी हुई चट्टान। आज भी ऐसा ही है, बुद्धि के विचार वहाँ लोकप्रिय लोगों को वहाँ खड़े हुए देख रहे थे, वे मारी हुई चट्टान को देखने में असफल रहे। यहाँ तक कि स्वयं बिशप पवित्र आत्मा की सामर्थ को देखने में असफल रहा, पड़ाव में राजा की चिल्लाहट, वे इसे देखने में अयोग्य रहे। इसलिए आज फिर से उसी प्रकार से है, परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को बुला रहा है, और वे अब चुने हुए हैं। और अब वे किस लिए चुने हुए हैं? पुनरुत्थान के लिए। और वे उन्हें किस प्रकार के चिन्ह दिखा रहा है? पुनरुत्थान का चिन्ह। तब वो उन्हें क्या दिखा रहा था? एक छुटकारे का चिन्ह कि उन्हें बंधुआई से छुड़ाए, शक्ति का एक चिन्ह जो आकाश को बंद कर सकता था या आकाश को अंधियारा कर सकता था। और अब वो अपने पुत्र की पुनरुत्थान की सामर्थ को दिखा रहा है उनके बीच में, कि उनका पुनरुत्थान इस कब्र और कब्रिस्तान में से कर दे जिसमें हम हैं, उस देश के लिए जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है। पुनरुत्थान का चिन्ह आत्मिक मिस्र और आत्मिक बाबुल में से बाहर बुला रहा है, जानते हुए। अब मैं इसे शांति के साथ कह दूं कि आप इसे पकड़ लेंगे, उसी व्यवस्था के द्वारा कर रहा है जो उसने आरंभ में किया। वही चीज वो कर रहा है, अविश्वासी की आंखों को अंधा कर रहा है, विश्वासी की आंख को खोल रहा है। और ध्यान दें, राजनीति इसे बुद्धिमानी की ओर कर रही है, राजनीति और कलीसिया, राजनीति और राष्ट्र, हर चीज, और दूसरी ओर का उनसे छिपा हुआ है एक आत्मिक कारण। परमेश्वर ने एक पुरुष को जंगल में लिया, उसे प्रशिक्षण दिया और उसे वापस ले आया और उन चीजों को लिया और लोगों को बाहर लाया। देखिए मेरा क्या अर्थ है, वो अपनी योजना को नहीं बदल सकता, वो परमेश्वर है, वो कभी भी झुंड के साथ व्यवहार नहीं करेगा, उसने कभी नहीं किया, वो एक व्यक्तिगत से व्यवहार करता है और उसने किया और वो करेगा और उसने प्रतिज्ञा दी है, यहाँ तक कि मलाकी 4 में वो ये करेगा, ये ठीक बात है। इसलिए यहाँ उसकी प्रतिज्ञा है, वो क्या था प्रतिज्ञा की जो उसने कहा कि वो ये करेगा, और हम यहाँ पर हैं। क्या ही लोग आनंदित हमें हो जाना चाहिए, उन्हें चिन्ह दिया जा रहा है उसकी प्रतिज्ञा के द्वारा, वचन का चिन्ह, प्रतिज्ञा का वचन, उसने प्रतिज्ञा दी है कि वो ये करेगा और वे लोगों के विश्वास को वापस फेरेगा, लोगों के हृदय वापस मूल पेंतिकोस्तल पूर्वजों के विश्वास पर, उसने ये करने की प्रतिज्ञा दी है, अपने चिन्हों को दिखा रहा है। और जैसा ये सादोम के दिनों में था, ऐसा ही ये मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। किस प्रकार के चिन्ह कलीसिया ने सादोम में देखे? बुद्धिमान कलीसिया ने क्या देखा? दो प्रचारकों को। आत्मिक कलीसिया ने क्या किया? चुनी हुई अब्राहम और उसका झुंड, परमेश्वर को शारीरिक देह में प्रकट होते हुए देखा, मनुष्य की देह जो आत्मा को परख सकता था, और बताता है उसके पीछे सारा क्या कह रही थी। जैसा कि ये लूत के दिनों में था, इसी प्रकार ये मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। हम पवित्र आत्मा को अपने बीच में देखते हैं, उन्हीं चीजों को कर रहा है, मनुष्य की देह में कार्य कर रहा है। यही घड़ी है, समझे मित्रों, हम बस यही है। कुल मिलाकर एक निर्गमन चल रहा है, परंतु अब ध्यान दें, उसने ये तब किसके द्वारा किया? ध्यान दें और इसे अपने आत्मिक विचारों में लें। होने पाए पवित्र आत्मा उदासीनता की पुरानी टोपी को अब पीछे रख दे और ध्यान से देखें। परमेश्वर ने कभी किसी चीज को करने का निर्णय लिया और एक ओर से वो इसे कभी नहीं बदल सकता। अदन वाटिका में जब वो मनुष्य को वापस छुड़ाकर संगति में लाना चाहता था, उसने एक निर्णय लिया, ये लहू था। उन्होंने शिक्षा से कोशिश की, उन्होंने नामधारी से कोशिश कर ली, वे राष्ट्रीयकरण से कोशिश कर चुके और हर चीज, और इसने कभी भी काम नहीं किया। केवल एक ही स्थान है जहां परमेश्वर मनुष्य के साथ मिलेगा, और वो बहाए हुए लहू के नीचे, जैसा ये अदन वाटिका में था, कभी नहीं बदला। केवल स्थान जहां परमेश्वर मिलता है, अय्यूब के दिनों में वो बलिदान किए गए मेमने की अधीनता में, केवल स्थान जहां वो इसराइल के दिनों में मिला, बलिदान किए गए मेमने के नीचे, जैसा उसने अदन वाटिका में किया, मेमने के बलिदान के नीचे, आज केवल एक ही स्थान के नीचे मिलता है। ये नामधारियों में नहीं है, वे विवाद और एक दूसरे से लड़ते हैं, कलीसियावादी में नहीं, वे अब भी वही चीज करते हैं, बुद्धिमानियों में नहीं, वे सब मिलजुल गए हैं, परंतु मेमने के लहू के नीचे हर विश्वासी संगति में मिल सकता है जहाँ जीवन है। परमेश्वर ने निर्गमन के दिनों में चुना, उसने एक झुंड को बाहर बुलाया और उस झुंड में से, मैं चाहता हूं कि आप किसी चीज पर ध्यान दें, उसे केवल दो मिले जो प्रतिज्ञा के देश में गए। उन्हें बाहर निकालने के लिए उसने क्या चुना? राजनीति, संगठन। उसने नबी को चुना, अग्नि स्तंभ के अलौकिक चिन्ह के साथ, कि लोग गलती नहीं करेंगे। जो भविष्यद्वक्ता ने कहा सत्य था, और परमेश्वर अग्नि स्तंभ में नीचे उतर आया, अपने आप को प्रमाणित किया, अपना वचन दिखाया, ये ठीक बात है। यही जो वो लाया, उसका पहला निर्गमन, उसका दूसरा निर्गमन, परमेश्वर सदा तीन में जाता है, वो तीन में सिद्ध है। आप मेरे प्रचार पर ध्यान दें, ये सदा 3 और 7 में है, 7 पूर्ण, 3 उसकी सिद्धता, पहला दूसरा और तीसरा खिंचाव, और ओ सब हर चीज, समझे, न्यायोचित, पवित्रकरण, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हर चीज, समझे। उसने क्या किया? पहले निर्गमन में उसने एक भविष्यवक्ता भेजा अग्नि स्तंभ के अभिषेक में, और उसने लोगों को बाहर बुला लिया, और ये उसका पहला निर्गमन था। और जब इसराइल का समय पूरा हुआ, उसने फिर से एक परमेश्वर भविष्यवक्ता भेजा अग्नि स्तंभ के साथ। यहुन्ना ने इसे स्वर्ग से पंडुकी के समान उतरते देखा, और उसने कहा, मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ और मैं परमेश्वर के पास वापस। उसकी मृत्यु गाड़े जाने और जी उठने के बाद तार्सुस का शाउल दमिश्क के मार्ग पर था तो उसी अग्नि स्तंभ को देखा और वो एक इब्रानी होने के नाते वचन की अच्छी शिक्षा पाई थी। कहा, प्रभु तू कौन है? वो जान गया कि ये प्रभु है। वो अग्नि का स्तंभ, वो एक इब्री था। कहा, तू कौन है? और उसने कहा, मैं यीशु हूँ। दूसरा निर्गमन, वो एक अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता को लेकर आया जो कि उसका पुत्र था, परमेश्वर भविष्यद्वक्ता। मूसा ने कहा वो एक भविष्यद्वक्ता होगा और एक अग्नि स्तंभ था और चिन्ह और आश्चर्य कर्म किए। और उसी भविष्यद्वक्ता ने कहा कि जो कोई मुझ में विश्वास करता है वे काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। और यहाँ उसने उसी बात की प्रतिज्ञा की है निर्गमन में, अंत के दिनों में, और वो इसे बदल नहीं सकता। और वैज्ञानिक प्रमाणों के द्वारा, आत्मा की गवाही के द्वारा, आत्मा के कामों के द्वारा, आज हम ये देखते हैं कि महान अग्नि स्तंभ हमारे मध्य में कार्य कर रहा है और चिन्ह और आश्चर्य कर्म यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लोगों को नामधारी वाद में से बुला रहा है यीशु मसीह की उपस्थिति में कि देश में जाते हुए जीवित रहें। मित्रों, इसमें कोई गलती नहीं है, ये वो नहीं जो मैं कह रहा हूँ, मैं तो बस आपका भाई हूँ, परंतु ये वो जो परमेश्वर आप पर सिद्ध कर रहा है जो इसे सत्य बनाता है। वही अग्नि स्तंभ उसने दूसरे दो को लिया, प्रयोग किया और आज वो इसे आपके बीच में लाया है और इसे वैज्ञानिक रीति से प्रमाणित किया है। जैसा कि आप जानते हैं, लाइफ पत्रिका ने इसे पिछले महीने छापा है। वहाँ जहाँ कितने यहाँ पर थे और मुझे इस विषय में बताते हुए सुना क्या घटित हुआ, इसके पहले उसने ये किया लगभग हरेक के लिए कलीसिया में, ये यहाँ है। वे नहीं जानते ये सब किस विषय में है। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं, किसके पास इसका चित्र है, बुलाया हुआ एक बादल 26 मील ऊंचा पैरामिड के आकार में, 7 दूत उसमें चित्रित हैं, वापस लाए और आपके पास परमेश्वर का वचन प्रेरणा में लेकर आए। ये इन समयों को बताते हैं जिसमें कि आप आ रहे हैं और जीवित हैं। आत्मिक समझ से इसे इस समय समझ जाइए, देखिए और इसे लेती है। ये एक निर्गमन है, हम इन्हीं किन्हीं दिनों में छोड़ने जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्मरण रहे, और मैं एक मिनट में बंद कर दूंगा, मेरे पास 10 मिनट हैं। अग्नि स्तंभ जिसने उन्हें बाहर बुलाया और प्रतिज्ञा के देश के लिए उनकी अगुवाई की, एक भविष्यद्वक्ता के अभिषेक में, एक अग्नि स्तंभ जिसकी ओर वे देख सकते थे, प्रतिज्ञा के देश के लिए अगुवाई की, अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता की अधीनता में, और वे बराबर उसे अस्वीकार करते रहे। ये ठीक बात है, निश्चय ही। अब मैं जानता हूँ कि हमारे बपतिस्मे की सभा है, मेरे पास लगभग 6 पन्ने और बचे हैं, मैं समझता हूँ, परंतु अब मैं बंद करने जा रहा हूँ, बस एक मिनट में। इस पर ध्यान दें, हम एक बुलाहट में हैं। बाबुल से बाहर निकलो मेरे लोगों, स्वर्गदूत की आवाज ने कहा। किससे बाहर? भ्रम से। क्या मेथोडिस्ट सही है या बैप्टिस्ट या कैथोलिक? इससे बाहर आ जाओ, परमेश्वर सही है। आप कैसे जानते हैं? हर मनुष्य का वचन झूठा और मेरा सच्चा, इससे बाहर आ जाओ। आप क्या जानते हैं? वही अग्नि स्तंभ, वही आत्मा का अभिषेक प्रतिज्ञा के देश की ओर ले जा रहा है। ध्यान दें, उनकी अगुवाई की, उन्हें बाहर लेकर आया, प्रतिज्ञा की देश की ओर उनकी अगुवाई की, इसराइल एक राष्ट्र, और वही परमेश्वर, वही अग्नि स्तंभ, केवल उसने, वे कहते हैं कि वो कैमरा, जब आप जॉर्ज लेसी को पढ़ते हैं, अब मुझे नहीं, आप पढ़ते हैं जहां जॉर्ज जे लेसी ने उस चित्र की जांच की, एफबीआई का अध्यक्ष, उंगली की छाप और दस्तावेजों का, वहां उसका कथन है। उनमें से कुछ कहते हैं ये लेंस पर 2 बार प्रकाश पड़ा, दसियों हजार लोगों ने इसे देख लिया अपनी आंखों से, हमने वहां खड़े होकर इसे देखा, आपने इसे देखा, ये नहीं। उन्होंने कहा ये दृष्टि का भ्रम है। श्री लेसी ने क्या कहा? कैमरे की यांत्रिक आंख मनोविज्ञान को नहीं लेगी। ओह, ये दृष्टि भ्रम नहीं था, ये वहाँ पर है, वही अग्नि स्तंभ। तब वे कहते हैं ओ अच्छा, ये भ्रम था। अब कैमरे कार्य टूसान के सैकड़ों मीलों, ये 6 महीनों पहले हुआ, हमने आपको पवित्र आत्मा के द्वारा बताया, मैं वहाँ समाचार एकत्र करने जा रहा हूँगा, क्योंकि पिरामिड का लेख बाहर था, जैसा कि भाई ने स्वप्न देखा था और मैंने आपके लिए इसका अनुवाद दिया था, यही कुल मिलाकर अनुवाद था। अब न्यायोचित पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मे के भेद स्पष्ट कर दिए गए हैं। अब इसकी अनसुलझी बातों को ले रहे हैं जो कि सात मोहरों में छिपी थी, न कि सात कलीसियाओं में। सात मोहरें भेदों को प्रकट करती हैं। और फिर उसने इस बात को ऊपर खोल दिया और वहाँ पर एक पत्थर को पाया, सफेद, परंतु इस पर कभी नहीं लिखा गया था। ये एक भेद था। ट्यूसान जाओ, इससे पहले कि घटित हो, पहले से बताओ। ट्यूसान के उत्तर की ओर खड़े हो, यहाँ इसके साथ गवाह खड़े हैं। जब धमाका हुआ जिसने पहाड़ को लगभग जड़ से ही हिला दिया, और उस समय में उजियाले का एक चक्र वहाँ हवा में था जब विज्ञान ने इसका चित्र लिया। अब 26 मील ऊंचा, कोहरे की दूरी से लगभग 5 गुना या कुछ भी हो सकता, और वे ये भी नहीं ढूंढ पाए इसने क्या किया। सांझ के समय के लगभग उजियाला होगा। महिमा का मार्ग आप निश्चय ही पाएंगे यदि आप चुने हुए हैं। वो बीज सूखी भूमि पर गिरता है, पत्थरों पर, ये कभी कुछ नहीं करेगा। कठोर पत्थर के हृदय जो तटस्थ होना चाहते हैं, परंतु यदि ये मुलायम भूमि पर गिरेगा, विश्वास की दयालु भूमि, ये एक मसीही को लेकर आएगा जिसमें आत्मा के फल होंगे। ध्यान दें, परमेश्वर ने ये कैसे किया। अब उसके पास वही अग्नि स्तंभ है जो प्रमाणित हुआ। किसी ने कहा, क्यों नहीं तुम जाकर वैज्ञानिकों को बता देते हो इस विषय में? आप सोचते हैं वे इसका विश्वास करेंगे? अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, यीशु ने कहा। नहीं, ये करने की मुझे अगुवाई नहीं, जबकि ठीक उसी नगर में था जहां वे इसके लिए बुला रहे थे। मैंने सोचा मैं जाऊंगा, पवित्र आत्मा ने कहा अलग रहो, ये उनके लिए नहीं है, वापस जाकर आराधनालय में बताओ। ठीक है, और ये घटित होगा। यदि जो वे कहते हैं घटित होता है, तब स्मरण रखें, मैं बोल चुका हूँ। प्रभु कहता है, देखिए इसके पहले ये घटित हो, ये होता है। बाइबल की सुनिए, परमेश्वर की आवाज इस दिन में आपको बुला रही है। अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, वही अग्नि स्तंभ लोगों की फिर से अगुवाई कर रहा है उस प्रतिज्ञा के देश के लिए, सहस्र शताब्दी, जहाँ हम प्रेरणा की आधीनता में पाते हैं इस छठवीं मोहर का। ये इससे पहले कभी नहीं सिखाया गया कि पृथ्वी को सहस्र शताब्दी के लिए कैसे शुद्ध किया जाए। अग्नि स्तंभ उनकी सहस्र शताब्दी में अगुवाई कर रहा है। और अग्नि स्तंभ पर ध्यान दें, जिसने इसराइल की बंधुआई से अगुवाई की निर्गमन में, अग्नि स्तंभ परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर आग था और अग्नि स्तंभ ने केवल भस्म दग्धता का अभिषेक किया। अग्नि स्तंभ वहाँ स्वर्गीय गवाह के समान खड़ा था कि मूसा बुलाया गया था। आपको दातान आदि स्मरण है, कहा हम एक संगठन आरंभ करना चाहते हैं। मूसा तू अपने पर बहुत कुछ लेता है, तू ये कहने का यत्न कर रहा है कि केवल तू ही हमारे मध्य में पवित्र है, प्रभु की सारी मंडली पवित्र है, कैसे तू ये अपने पर ले सकता है। तब मूसा मुंह के बल गिरा और रोने लगा। परमेश्वर ने कहा, अपने आप को उससे अलग कर, मैं बस धरती खोलूंगा और उसे निगल जाऊंगा। एक प्रकार कैसे मूसा ने उन्हें बताया कि वो उन्हें बता रहा था कि परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर ने इसे सत्य होने को प्रमाणित किया। यहाँ तक कि मिरियम स्वयं में नबिया और हारून मूसा पर हंसे और इथोपियन लड़की से विवाह करने पर उसका उपहास उड़ाया, और परमेश्वर क्रोधित हो गया, उसके दास के विरुद्ध बोल रहे हैं। उसने क्या किया? उसने उन्हें तंबू के द्वार पर बुलाया, और मिरियम फिर भी वो एक भविष्यद्वक्तनी थी, परंतु मूसा भविष्यद्वक्ता से अधिक था, भविष्यद्वक्ता से बड़ा। उसने कहा, क्या तुम में परमेश्वर का भय नहीं? यदि तुम्हारे मध्य में कोई भविष्यद्वक्ता है, मैं प्रभु उससे दर्शन में बात करूंगा और अपने आप को उस पर स्वप्न में प्रकट करूंगा। परंतु कहा मूसा नहीं, कहा क्या तुम परमेश्वर का भय नहीं मानते? और वो कोढ़ से अधमरी हो गई उसी समय। आप ये जानते हैं, क्या उसने नहीं कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्या तुम भविष्यद्वक्ता को देखने को गए थे? हाँ, भविष्यद्वक्ता से बड़े को। क्यों? क्यों वो एक भविष्यद्वक्ता से अधिक बड़ा है? वो वाचा का संदेश वाहक था, वो वाचा का संदूक जो उन दोनों विधानों को आपस में जोड़ता है। और आज वो हमारे मध्य में क्या है? ये महान पवित्र आत्मा जो भविष्यद्वक्ता से बड़ा है, ये परमेश्वर का प्रकटीकरण हमारे मध्य में अपने वचन के साथ कि इसे सिद्ध करे, भविष्यद्वक्ता से अधिक करता है जो भविष्यद्वक्ता करता है, उससे हजार गुना अधिक। एलिया युग का एक महानतम भविष्यद्वक्ता, केवल चार अलौकिक चीजें की अपने सारे जीवन में 80 कुछ वर्ष का, और एलिशा दुगने भाग के साथ ने 8 किए, और हम हजार गुना हजार अपनी आंखों से प्रभु के स्वर्गदूत को देखते हैं अग्नि स्तंभ में। वैज्ञानिक खोज इसे संसार में ले गई ये जानते हुए कि उनका न्याय इसके द्वारा होने जा रहा है। उस मेमने ने क्या किया कि प्रभु का स्वर्गदूत जो कि मसीह था, आप इसका विश्वास करते हैं? संत यूहन्ना 6, वे सारे इस जल को पी रहे थे और एक महान समय और आनंदित, उसने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ जो परमेश्वर के पास से आई है स्वर्ग से, मैं वो चट्टान हूँ जो जंगल में थी। उन्होंने कहा, अब हम जान गए हैं कि तू पागल है, तू पागल है, तुझ पर शैतान है, तू एक पागल मनुष्य है एक शैतान के साथ। अब जानते हैं लोगों पर आत्मा होती है, कभी कभी वे बहुत ही सक्रिय होते हैं धर्मी। उन्होंने कहा, तू एक शैतान है, तेरे ऊपर शैतान है, तू एक सामरी है और तेरे पर शैतान है। कहा, और यहाँ तू यहाँ तक कि 50 वर्ष से अधिक का नहीं, और तू कहता है तूने अब्राहम को देखा है? मैं देख सकता हूँ कि वो कुछ कदम पीछे हटा, बोला, मैं वो जो मैं हूँ, इसके पहले अब्राहम था मैं हूँ। ये एक जलती आग थी, वो झाड़ी में अग्नि स्तंभ। जब वो मरा वो तीसरे दिन जी उठा, और शाऊल ने उससे मार्ग में भेंट की, वो वापस अग्नि स्तंभ में था। कहा, मैं परमेश्वर से आया हूँ और मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। जब पत्रस जेल में था वो अग्नि स्तंभ अंदर आया, दरवाजे खोल दिए और उसे बाहर ले गया। ये ठीक बात है, उस अग्नि स्तंभ ने उनकी अगुवाई किधर की? अब याद रखें, मूसा अग्नि स्तंभ नहीं था, वो तो अभिषिक्त अगुवा अग्नि स्तंभ की अधीनता में था, और अग्नि स्तंभ केवल उसके संदेश को चिन्ह और आश्चर्य कर्मों से प्रमाणित कर रहा था, और अग्नि स्तंभ उनकी अगुवाई करके परमेश्वर के प्रतिज्ञा के देश में ले गया, जहां वो स्वयं उनके बीच में देहधारी होकर आएगा किसी दिन। ये ठीक बात है। उन्होंने क्या किया? बुड़बुड़ाना, छटपटाना और सारी बातें, ये दिखाने के लिए ये साधारण मेमने के लहू के नीचे थे, परंतु इस बार परमेश्वर की महिमा हो, वो स्तंभ हमें अपने बीच में देखते हैं। अग्नि स्तंभ हमें सहस्र शताब्दी में ले जाएगा, जहां वो अपने लोगों में उस महान सहस्र शताब्दी के राज्य में वापस आएगा, इस निर्गमन के बाद, जहां हम उसके साथ अनंतता में वास करेंगे। उसके पास सदा पिता का वचन था, सदा सिद्ध हुआ कि ये सही है। हम एक निर्गमन में हैं और छोड़ रहे हैं, और एक क्षण में टेपों को बंद कर रहे हैं। ओ मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, दोनों जो उपस्थित हैं और जो इन टेपों को सुनेंगे, मुझे आपके भाई और परमेश्वर के राज्य के नागरिक के समान इस निर्गमन के लिए बाहर आ जाओ, क्योंकि वे सब जो पीछे छूट गए वे पशु की छाप को लेंगे। बाबुल से बाहर आ जाओ, इस भ्रम में से बाहर आ जाओ, इस व्यवस्था से बाहर आ जाओ, और जीवित परमेश्वर की सेवा करो। होने पाए वाचा का ये महान स्वर्गदूत यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में इसे डकैती न सोचें, परंतु परमेश्वर के साथ बराबर हो गया। अब वो अग्नि स्तंभ है उसी रूप में जिसमें वो पहले था, उस पहले निर्गमन को लाया, दूसरे निर्गमन को ला रहा है, और यहाँ ये तीसरे के साथ है। पहला निर्गमन उसने क्या किया? वो उन्हें स्वाभाविक देश से निकाल कर लाया स्वाभाविक देश में। दूसरा निर्गमन, वो उन्हें आत्मिक स्थिति से बाहर ले आया पवित्र आत्मा के आत्मिक बपतिस्मे में। अब वो उन्हें पवित्र आत्मा के आत्मिक बपतिस्मे से सीधा वापस सहस्र शताब्दी के अनंत देश में ला रहा है, और उस महान के पश्चात वही अग्नि स्तंभ, उसी अभिषेक की व्यवस्था के द्वारा वही परमेश्वर उन्हीं चीजों को कर रहा है, और वही वचन पहले की घोषणा करता है, दूसरे वाले की घोषणा करता है, वही वचन दूसरे वाले की घोषणा करता है, तीसरे वाले की कर दी है, और यहाँ इसे हम अपने बीच में देखते हैं। बाहर आ जाओ, ओ इस गड़बड़ी से बाहर आ जाओ, जीवित परमेश्वर के पास आ जाओ, वचन पर आ जाओ, और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में निवास किया, और अब वो हमारी देह में है, हमारे बीच में रहता है, बाहर आ जाओ और जीवित परमेश्वर की सेवा करो, जबकि हमने अपने सिरों को झुकाए हुए हैं। अपने झुके हुए सिरों के साथ, अपने प्राण की गहराइयों में, अपनी सारी गहराइयों में जो आप में है, क्या आप इच्छा करते हैं कि स्मरण किया जाए? आप संसार की सारी बातें रोकने को तैयार हैं और परमेश्वर के लिए जिए? अब यदि आपका ये अर्थ नहीं है, आप ये ना करें, परंतु यदि आपका यही अर्थ है अपने पूरे हृदय से कि अब आप स्वीकार करते हैं, जैसा यीशु ने कहा अपनी सेवकाई के अंत में, क्या तुम अब विश्वास करते हो? क्या आपने विश्वास कर लिया है कि ये बातें सही हैं, परमेश्वर द्वारा प्रमाणित, और कि हम अंत के समय में हैं, और आप सच में अब मसीह के पास आना चाहते हैं? इस निर्गमन में आ जाएं, तटस्थ कहलाने वाले से बाहर, नामधारीवाद से, विचार और संसार की चीजें, और आप पूरे हृदय से उसे समर्पण करना चाहते हैं और निकलकर निर्गमन में आ जाएं, उस धन्य प्रतिज्ञा के देश में। क्या आप अपने हाथों को उठाएंगे जबकि हम प्रार्थना करते हैं? क्या आप वास्तव में निश्चित हैं कि आप बाहर आना चाहते हैं? हर कोई, स्वर्गीय पिता, वे जिन्होंने अपने हाथ उठाए हुए हैं, प्रभु अब आप उन्हें बाहर आने दें। होने पाए पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा के वचन पर हो, पवित्र आत्मा इनके हृदय में हलचल करे। हमारी भक्त मंडली से बाहर वहाँ लगभग 20 हाथ हैं। पिता, मैं समझता हूँ ये संतुष्ट करता है और जानते हैं कि यही है, ये सत्य है, और ये बाहर आना चाहते हैं। यदि वहाँ था इज़राइल के बाहर आने के दिनों में, 25.5 लाख लोगों में से केवल 2 ही देश में पहुँच पाए। यीशु मसीह के दिनों में वहाँ लगभग 120 ही कर पाए, और अब इस संसार के अंत के दिनों में आपने कहा, सीधा है वो द्वार और सकरा है वो मार्ग जो थोड़े ही इसे पाएंगे, परंतु चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है और बहुत से उसमें प्रवेश करेंगे। ये शब्द असफल नहीं हो सकते, ये आपके हैं। अब मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस घड़ी में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदयों का खतना करेंगे, संसार की सारी चीजें बाहर कर दें, इनके कानों का खतना करें, ताकि ये परमेश्वर की स्पष्ट आवाज को सुन सके जो अपने वचन में से होकर बुला रहा है और दिन के उजियाले में होकर, और प्रभु प्रदान करें कि इनकी आंखें खुल जाएंगी और ये परमेश्वर की महिमा को देख सकें इस अंतिम समाप्त होने वाली घड़ी में। आपने कहा, वो सब जो पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा और मैं उन्हें अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। प्रभु, हो सकता है यहाँ बहुत से हों जो अब भी ना समझ पाए हों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनसे व्यवहार करेंगे और उन्हें एक और सौभाग्य दें प्रभु, ताकि वे इसे समझने के योग्य हो सकें। आपको आपके वचनों में से सुनते हुए अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं और फिर हमसे अलौकिक आवाज में बोलते हैं, और फिर अनुवाद के साथ कि आप महान कार्यों को देखें। और सत्य प्रमाणित करें बाइबल के अनुसार। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आप हमें हमारे पापों को क्षमा करेंगे। अब और जैसा कि मैं स्वयं को इस वचन पर रखता हूं, परमेश्वर मैं सोच रहा हूं कि एक ही सप्ताह पहले मैंने अपने आप को फर्श पर मरे हुए मनुष्य के ऊपर डाला। यहाँ मैंने देखा उस महान पवित्र आत्मा ने उसे जीवन में वापस ला दिया। उसकी आंखें वापस उसके सिर के अंदर चली गई थी, मरा हुआ पड़ा था। बस थोड़े से शब्दों में आपके नाम को पुकारा, मैंने उसे जीवित देखा और आज वो यहाँ अब भी जीवित है। प्रभु, आप एक से परमेश्वर हैं, जो जब पौलुस ने अपने आप को उस लड़के पर डाला जो उसे बहुत देर से प्रचार करते हुए सुन रहा था, वो पुरुष जो खिड़की पर से गिर पड़ा, आप वही परमेश्वर हैं जो जीवन को वापस ला सकता है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने पाए अविश्वासी विश्वास न कर पाए, परंतु हम विश्वास करते हैं। प्रभु, तूने अपने आप को हम पर प्रमाणित किया है। अब मेरे हृदय का चिंतन और मेरे मस्तिष्क के विचार, मेरी शक्ति और सब इस वचन में पिघल जाए और वचन और मैं एक साथ हो जाएं, प्रभु, लोगों के साथ परमेश्वर के राज्य की ओर आगे बढ़ते जाएं। प्रभु, इसे प्रदान करें, हमारे पापों को क्षमा कर दें, हमारी बीमारियों को चंगा कर दें और अपने राज्य के लोग बना लें। और अब जैसा कि ये लोग आ रहे हैं प्रभु, और तालाब खुला हुआ है, जल तैयार है और कुछ ही मिनटों में बपतिस्मे आरंभ होंगे। हम याद करते हैं जब यही सुसमाचार प्रचार किया गया था, बाइबल कहती है जितनों ने विश्वास किया बपतिस्मा लिया था। यहाँ पर रुमाल रखे हुए हैं प्रभु, जिन्हें मैं यीशु मसीह के नाम में आशीषित करता हूँ बीमारों की चंगाई के लिए। तब जब हमारी सेवाएं लंबी हैं, देर घंटों तक चलती हैं, हमें वचन डालना चाहिए जबकि भूमि तैयार है, बो दो क्योंकि ठंडे जाड़े आ रहे हैं। हम ये देखते हैं पत्तियां गिर रही हैं और हम जानते हैं कि शीतकाल पास में ही है। हमें सतह खोदनी चाहिए और बीज गाड़ दें। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता कि आप प्रत्येक के हृदय से बात करेंगे। बाइबल ने कहा जितनों ने विश्वास किया बपतिस्मा लिया। और अब प्रभु, अब यदि यहाँ बहुत से हैं जिन्होंने विश्वास कर लिया और अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया तेरे प्रिय बालक यीशु के नाम में, उन्हें पाए वे इस सुबह में आए प्रेम और नम्रता में और अपने पापों को स्वीकार करते हुए और संसार की चीजों के लिए मरते हुए कि गाड़े जाएं, कि यीशु मसीह के नाम को ले लें, इसके पश्चात भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा। हम इन्हें आपको समर्पित करते हैं अब प्रभु, इस उद्देश्य से यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हम सेवा को भाई नेविल को देते हैं और जो कुछ भी उनके पास है कहने को, जबकि बपतिस्मे की सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। और आज रात्रि 7:30 बजे प्रभु ने चाहा मैं इस दूसरे संदेश को टेप करना चाहता हूँ। परमेश्वर तब तक आपको आशीष दे।